क्यों ऐसा होता है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं बट व्रत रखने के नाम पे हमें शर्म आती है? सेम चीज है, सेम चीज को अगर मैं अंग्रेजी नाम दे दूं और उसके पीछे एक जापानीज थ्योरी लगा दूं तो इट्स एक्सेप्टेबल, बट वही चीज अगर भारतीय परंपरा में है और सभ्यता में जुड़ी हुई है तो आपको लगता है कि नहीं ये तो ये मेरे क्लास पे नहीं है, मेरे लेवल पे नहीं है। व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड इज हैप्पी, इट्स ऑलवेज बीन द केस। इंडिया का डिक्लाइन इज द वर्ल्ड का डिक्लाइन। सुपर पावर तो हमें बनना ही नहीं है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोला विश्व मित्र बनना, इट्स अ वेरी राइट वर्ड। इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज सक्सेसफुली टैकल टेररिज्म। हमारा तो ब्रांड ही यही था कि यहाँ लोग भूखे मरते हैं, और आज वो देश सबसे बड़ी फ्री फूड स्कीम चला रहा है, उसमें भी 85 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं, 5 साल तक हमने कमिटमेंट दिया है।
ऑन पॉपुलर डिमांड हम ये गेस्ट वापस लेके आए हैं। ये फिगरिंग आउट की हिस्ट्री में फास्टेस्ट रिपीटिंग गेस्ट हैं, सर सुजान पाल सिंह। इनके साथ हमने एपिसोड बनाया था इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, कि इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं और ग्रोथ क्या है। उसी का एक्सटेंशन बनाया है ये पॉडकास्ट। ये मेरे लिए पॉडकास्ट लास्ट वाले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वाले में हमने इतनी डेप्थ में बात करी है कि इंडिया के चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए कैसे, फिर इंडिया यहाँ से ग्रो कैसे होगा, दूसरी कंट्रीज से हम क्या सीख सकते हैं, दूसरी कंट्रीज को हम सिखा क्या सकते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री अकॉर्डिंग टू सर जिसने टेररिज्म को बिना मुंह तोड़ जवाब दिए अंदर ही अंदर ख़त्म कर दिया और एटलीस्ट इंडिया को उन थ्रेट से बचा लिया। ये कैसे किया इंडिया ने, इंडिया ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स में एक्सपर्ट क्यों है, कैसे बना, क्या माइंडसेट के साथ हमारी पूरी कंट्री ऑपरेट करती है, इन सब के पीछे लेसन नोन फैक्ट्स के बारे में हमने इस एपिसोड में बात करी है। Enjoy this show, but before you do that, go subscribe Raj Shamani Clips and Raj Shamani Shorts channel, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आपको एक बेहतर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। Enjoy the show. Done. फिर कहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले? हाँ, नक्सलाइट बताओ क्या नक्सल। ओके,
इज़राइल से शुरू कर रहे थे हम।
इज़राइल से स्टार्ट करना,
इज़राइल हमास एंड हाउ इंडिया इज़ एन एग्जांपल
For
how to tackle terrorism. India is the only country which has successfully tackled terrorism. You take any case, JNK, Punjab, Northeast, and the mother of all was Naxalism. There was a time when India, that was telling you, there was
India
a time.
This is a bold statement, by the way, ki India is the only country jisne terrorism ko dhang se handle kiya.
Modern world mein, India is the only country which has not dhang se successfully tackled terrorism.
Okay.
And multiple fronts. So whether it is JNK, whether it is the Khalistan movement in Punjab, whether it is the biggest one was Naxalism. There was a time when Naxalism was covering 30-40% of districts of India. Nearly half, more than one third, less than half districts were under Naxalism, including once in Maharashtra. Odisha was entirely almost covered in Naxalism. Parts of West Bengal, Andhra Pradesh, and so on and so forth. Naxalism was left-wing extremism.
Okay,
so there were certain people, especially in very downtrodden villages across India, jahan pe bahut zara garibi thi, khane ki kami thi, development nahi tha. Aise problems ko capitalize kiya unhone, especially tribal areas mein. Aur unhone usko ek left-wing extremism bana diya ki we are contesting against the state now. State means the government. So the form of government itself, so it's not the government in power, it is the way India governs, rules, the democracy itself, the structure of democracy. Usse nahi, hum to ek hum apni hi government banayenge. And there were districts in India which had, and I have seen those districts where you know, this side of the bridge is sort of under the government control, and that side of the bridge, there's a red flag. And that red flag is from the Naxalism. So CPI, ML, karke parties hoti thi, Marxist, and wo hoti thi na, Maoist. The Maoist parties were there. So ye aisi parties hoti thi. And they were, kehne ko parties thi, but they were actually Naxalites. They were governing, and nobody could do anything there. The government officials could not properly enter there. There was risk, life ki risk thi. A lot of government officers were kidnapped, killed. There was a constant, ye hamari jo Central Reserve Police Force, CRPF, was in a constant battle. Abhi bhi hai. Khatam to puri tarah nahi hua hai, lekin it has gone down significantly over the past decade, a little more than a decade. How? Not just by fighting, you know, कि सबको जाकर के हम जो भी उनके sympathizers से सबको मार दिया. ऐसा नहीं किया. ऐसा करते तो वही होता जो अभी सारी दुनिया में हो रहा है. You know, you kill some people and और terrorists निकल के आ जाते हैं. But हमने एक तो बहुत ही targeted strike किया. उनके leaders को हमने capture किया और उनके leaders को eliminate किया हमने. और उससे ज़्यादा हमने development किया. कमी थी डेवलपमेंट की. पीपल वर जो सिंपथी आ रही थी या जो सपोर्ट उनको आ रहा था वो इसलिए आ रहा था बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था. तो हमने नक्सलिज्म को कॉर्डन ऑफ किया हथियारों से नहीं, डेवलपमेंट से. और ऑफ कोर्स यू हैव टू स्ट्राइक सम पीपल, कुछ तो इट्स अ वॉर सिचुएशन, तो वो भी हुआ. तो आज काफ़ी हद तक एक समय ऐसा लग रहा था कि नक्सलवाड़ी जो मूवमेंट है, नक्सलाइट मूवमेंट है, वो पूरा इंडिया खा जाएगा, जो पूरा रूरल इंडिया स्पेशली इट विल स्टार्ट पूरे उनके उसमें आ जाएगा, शिकंजे में. बट अभी तो वो छोटा सा एक पॉकेट मूवमेंट होकर रह गया है.
और मेन मतलब हाउ डिड दे वैसे लोग इकट्ठे कैसे करते हैं, डर के थ्रू, फियर
इंसेंटिव, पैसा देते थे, उनके पास पैसे थे, विदेशी शक्तियां उनको पैसे देती थी, एनिमीज ऑफ इंडिया उनको पेमेंट करती थी, और वो पेमेंट वो लोगों को देते थे जो लोग गरीब होते थे, और उन गरीबों को वो बहका करके उनको आतंकवादी बना देते थे. सो ये चलता रहा. तो फियर, इंसेंटिव, दोनों ही चीज़ें, और कहीं कहीं एक विद्रोह भी था कि हमें कुछ, क्योंकि जो भी आदमी नक्सलाइट बन जाता था उस एरिया में, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के करियर में उसी एरिया में काम किया, तो वहाँ पे जो बच्चा नक्सलाइट बन जाता था, जो लड़का, वो अपने गांव में लोगों से डरते थे, उसके घर वालों को कोई छेड़ता नहीं था क्योंकि वो नक्सलाइट है और वो उसके पास हथियार है. तो हथियार मेंट पावर. तो यूथ से वो जो है गुमराह हो गए. लेकिन आज उन्हीं यूथ को अगर खाने की समस्या नहीं है, भारत इस समय दुनिया में करीब सबसे बड़ा देश जो है, हम तो नहीं सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी 85 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं. 5 साल तक हमने कमिटमेंट दिया है, 5 ईयर्स, और कोविड के टाइम से चल रहा है. तो भारत के पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि हम लोगों को कम से कम भूखा तो नहीं मरने देंगे. और ये देश शुरू वहीं से हुआ था जहाँ भुखमरी वॉज, हमारा तो ब्रांड ही यही था कि यहाँ लोग भूखे मरते हैं. और आज वो देश सबसे बड़ी फ्री फूड स्कीम चला रहा है, और कब से चला रहा है, अब 5 साल, अगले 5 साल और पिछले 3 साल से चल रहा है और चलता रहेगा. तो इतना आर्थिक सशक्तिकरण है. तो इसकी वजह से फिर यू डोंट सी, इंसेंटिव नहीं है ना, कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा, तो वो ऐसे मूवमेंट्स में जाने की कोशिश नहीं करता. सो डेवलपमेंट से कॉर्डन ऑफ किया. सो पंजाब 1980s और 90s में जो खालिस्तान मूवमेंट था वो इतना खतरनाक हो चुका था कि विदेशियों को तो छोड़िए, इंडियन मीडिया बोलने लगी थी कि पाकिस्तान को होल्ड करना मुश्किल, पंजाब को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, इतना बढ़ चुका था. क्योंकि पंजाब, ये पाकिस्तान से फंडेड था पूरा खालिस्तान मूवमेंट, कनाडा में इसके लिंक्स थे, आज भी हैं, और वेल फंडेड मूवमेंट था. एंड आप यू नो वी वेंट थ्रू अ वेरी बैड साइकिल जहाँ पे इवन चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह को उन्होंने मार दिया था. इट वेंट सो बैड. बट उसके बाद व्हाट डिड वी डू, हमने आम आदमी पे बर्बरता करनी नहीं शुरू कर दी कि हमने एयरफोर्स लगा दी कि साफ कर दो, जो भी लगता भी है सस्पेक्टेड है उसको भी उड़ा दो, ऐसे नहीं किया हमने. वी टारगेटेड, समय लगा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि वो मूवमेंट जड़ से उखड़ गया. आज भी कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लगाने की, लेकिन लग नहीं पा रहा वो मूवमेंट. जेएनके में कितना 1990s, 2000, 2010 के दशक से भी जम्मू एंड कश्मीर में कितना आतंकवाद हमने देखा, लेकिन जब से हमने जो है जो कश्मीर का आर्टिकल था उसको हटाया, स्पेशल प्रोविजन हटाई और उसको एक यूनियन टेरेटरी बना दिया, हमने उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके बाद से कश्मीर में टेररिज्म इज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. उसमें भी ऐसा नहीं किया कि हमने कश्मीर की आम जनता पे कुछ नुकसान हो पाए, हमें ऐसा कोई काम नहीं किया. इनफैक्ट आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, अगर आप जाइए तो डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे होटल्स आ रहे हैं, टूरिज्म इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो भी जाता है वो पूछता है कि मैं कश्मीर में लैंड कैसे खरीदूं. इट्स बिकम सो सेफ एंड यू नो ऑफिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. सो दैट इज़ हाउ यू हैंडल टेररिज्म, नॉट बाय यू नो द वे द वर्ल्ड. US में टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ, उन्होंने पूरे सोचा मैं अफगानिस्तान को तो फ्लैट कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं तो बिन लादेन खत्म ही हो जाएगा. बट बिन लादेन अल्टीमेटली सर्जिकल स्ट्राइक में समाप्त हुआ अबोटाबाद में, पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान में तो था ही नहीं. जो हमास में इसराइल इस समय हमास पैलेस्टाइन में अटैक कर रहा है, बट हमास के लीडर तो कतर में, वी ऑल नो इट. सो अल्टीमेटली दिस प्रैक्टिस की कोलैटरल डैमेज इज ओके, दिस प्रैक्टिस की फ्लैटनिंग ऑफ बिल्डिंग्स इज ओके, रेजिडेंशियल लोगों पे अगर कुछ प्रहार होता है तो वो ठीक है, ये प्रैक्टिस चल नहीं पाई है. और दुनिया में बहुत सारे लेसन हैं, अमेरिका के लेसन हैं, इराक में इतना बड़ा वॉर किया अमेरिका ने, उससे निकल के आइसिस आई, उससे भी खतरनाक, अलकायदा से भी खतरनाक आइसिस निकल के आ गई. सो एनीथिंग जो सर्जिकल नहीं होता है वो टेररिज्म सॉल्व नहीं कर सकता. यू कांट बिहेव लाइक अ टेररिस्ट टू सॉल्व टेररिज्म, वो इंडिया नहीं करता ना. इंडिया का लेसन अलग है और सीखने वाली बात है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा शायद दुनिया में अगर टेररिज्म से कोई इफेक्टेड पार्टी थी तो हम थे. लेफ्ट विंग को सपोर्ट चाइना से आता था, और ये जो इस तरफ पंजाब और कश्मीर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो पाकिस्तान से फंडेड होते थे. दो विदेशी शक्तियाँ बड़ी बड़ी मिल करके भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और दे रही हैं, आज भी देती हैं, की कोशिश करती हैं. लेकिन तब उसके बाद भी भारत में ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवाद, एक साइकिल आया था 2000 के दशक में, बहुत ज़्यादा आतंकवाद होना शुरू हुआ था, लेकिन अब सब सबसाइड हो गया है. और उसको करने का तरीका हमारा ये था कि हम सर्जिकल थे, हम हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं. कोलैटरल डैमेज इज नॉट एक्सेप्टेबल. एक भी व्यक्ति मरता है जो कोलैटरल डैमेज है, सिविलियन है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. सो दैट इज व्हाट आई वाज रेफरिंग एज अ लेसन फ्रॉम इंडिया टू इजराइल.
हियर्स अ क्वेश्चन ऑन दिस. द राइट वे यू आर सेइंग कि डेवलपमेंट और एजुकेशन के थ्रू इज अ राइट वे टू किल टेररिज्म एंड टू टैकल टेररिज्म इन बेटर वर्ड्स, राइट? और जो अभी इसराइल कर रहा है या जो अदर कंट्रीज करती कि जाओ और पूरा साफ कर दो, खत्म कर दो, दैट डोंट यू थिंक दैट्स अ फास्टर वे टू डू इट? उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, बट दैट्स हाउ पीपल ट्राई टू जस्टिफाई देयर एक्शन बाय सेइंग कि हम लोग एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में हम खत्म कर देंगे एक बार, ताकि हम आगे आगे वाला टाइम में बहुत पीसफुल रहेंगे.
1948 के टाइम से, जब से इसराइल की स्थापना हुई है, इसराइल यही करने की कोशिश कर रहा है, आज तक नहीं हो पाया सॉल्व. US ने जब 9/11 का अटैक हुआ तो उसने कहा तालिबान को हम ख़त्म कर देंगे, अफगानिस्तान पे हम इतनी बम वर्षा करेंगे कि कहीं ना कहीं बिन लादेन तो ख़त्म ही हो जाएगा. ना तो बिन लादेन ख़त्म हुआ और तालिबान दोबारा अब तो US के हथियारों के साथ वर्जन 2 में आ गई है. इट्स इवन मोर पावरफुल. इस बार तो कोई चेक बैलेंस ही नहीं है उसका, कोई दुश्मनी नहीं है अब तो.
मतलब
तो US क्या हुआ तालिबान में, तालिबान को US ने कुछ समय तक दबा दिया, काबुल से हटा दिया, लेकिन अफगानिस्तान से नहीं हटी. ना वो आइडियोलॉजी हटी. तो ये जब 9/11 के बाद अगले 10 साल तक, 15 साल तक वॉर चलता रहा. फिर हमने देखा कि कैसे अभी एक साल में US विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान. उसके विड्रू, जैसे विड्रॉ किया बाइडेन ने, तो क्या हुआ, तालिबान इज टेकन ओवर. सो टुडे हु इज इन पावर इन तालिबान, इन अफगानिस्तान? तालिबान. एंड तालिबान वर्जन 2.0. एंड तालिबान वर्जन 2.0 इज यूजिंग व्हाट वेपन्स? It has at its disposal the weapons which the Americans left behind. तो अमेरिकन ने ना सिर्फ तालिबान को वापस दे दिया बल्कि उसको अपने ही हथियारों का गिफ्ट भी दे दिया, टू द ट्यून ऑफ $80 बिलियन. $80 बिलियन वर्थ के उसको हथियार दे दिए. अब उसके पास मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स हैं तालिबान के पास. ऑफकोर्स वो उसको उड़ा नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो एजुकेशन नहीं है. छोड़ के चले आए ना. सो अमेरिकन अपने हथियार छोड़ के चले गए और उन हथियारों का इस्तेमाल अब तालिबान करेंगे वर्जन 2.0 में, और बिल्कुल वही तालिबान वापस आ चुका है. सो 20 साल के संघर्ष में अमेरिका ने करीब $3-4 trillion का एक युद्ध लड़ डाला. उसमें अमेरिका की पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई. हम क्राइसिस से गुजरे, अमेरिका का जो 2009 क्राइसिस भी हुआ उसमें, और निकल करके क्या आया कि एक नया वर्जन ऑफ तालिबान आया जो पिछले तालिबान से भी ज़्यादा सशक्त है, क्योंकि उसके पास अमरीकी हथियार आ गया और वो भी फ्री वाले, और अब उसके पास अपोज करने वाली कोई फोर्स ही नहीं है क्योंकि अमेरिका उसको अपोज कर नहीं सकता. अभी अभी तो अमेरिका निकल गया वहाँ से. रूस एक कमज़ोर देश हो चुका है विद द यूक्रेन वॉर, तो वो भी इसको अपोज नहीं कर सकता, तो उसके कोई अपोजिशन ही नहीं है. जब जब ये इराक में गए, अमेरिकन्स वेंट टू इराक, उनको सद्दाम हुसैन को हटाना था. अब वो क्यों हटाना था एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि सद्दाम हुसैन के क्या टेररिस्ट लिंक थे ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है. तो वो वॉर इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन मार्क. लेकिन उस वॉर का नतीजा क्या हुआ, सद्दाम तो हट गए लेकिन निकल के कौन आ गया, आइसिस. आइसिस दुनिया की सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो निकल के सामने आ गई, और वो ना सिर्फ फिर से इराक को परेशान किया, उसने तो सीरिया को भी परेशान किया, उसने तो उस पूरे एरिया में ही एक अपनी ही अलग ही कलीफाइट बनानी शुरू कर दी कि हम अपने ही देश हैं. दैट हैपेंड. और वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई है. उसको ख़त्म करते हैं, नया वर्जन निकल के चला आता है. सो द प्रॉब्लम इज ऑफ डूइंग व्हाट वी आर सेइंग कि एकदम यू नो ख़त्म कर दें सब कुछ, तो यू नो दिस इज़ अ फास्टर वे. इट्स नॉट अ फास्टर वे बिकॉज दिस इज नो वे. What you will do is actually make the version 2 of it and the version 3 of it, which is even more lethal and vicious. और यही हो रहा है सारी दुनिया में. This is exactly what is happening.
Okay, today I read a news. I think India US के बीच में there was something happening related to Khalistan. You read that?
No, I don't. क्या हुआ?
नहीं, just that कोई, I think some Indian intelligence person was in US. जिसने दे वर प्लानिंग टू किल लाइक अ खालिस्तानी लीडर
इन यूएस.
हाँ, एंड दे हायर्ड लाइक अ हिटमैन हु टर्नड आउट टू बी दैट हिटमैन टर्नड आउट टू बी अ यूएस एजेंट, अंडरकवर यूएस एजेंट. तो एज अ डिड यू रीड द न्यूज़? नॉट
आई, टुडे आई हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर. आई हैव नॉट, कल से नहीं पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर.
आई रेड इट दिस मॉर्निंग. सो बिकॉज़ यू मेंशनड, आई वाज लाइक ओके इंडिया यूएस में ये क्या हो रहा है, बिकॉज़ यूएस कॉल्ड इट आउट.
हां, सो दे सी द
बिकॉज़ आई थॉट इंडिया यूएस इज सच स्ट्रांग, दे वोंट कॉल इट आउट सच थिंग्स इन in like public, that sorted out on a...
See, international relations mein kya hota hai, there's always two factions. So, hum sabko pata hai, Canada aur India ke beech mein kya chal raha hai. So, Justin Trudeau aaye yahan par, wapas gaye, unhone kuch aarop laga diye, jiska unke paas koi pukhta suboot nahi tha, humne suboot manga to wo chup ho gaye. Phir humne, unhone kuch sanction lagayi, humne double sanction laga di. Ab, there is ek international faction, North America mein especially aisa hai, jo anti-India hai. और वो यूएस में भी फैला हुआ है.
एंटी इंडिया,
एंटी इंडिया फैक्शन है. देर आर रीजंस, पोलिटिकल रीजंस. सो वाई वॉज ट्रूडो डूइंग ऑल दिस? फॉर इंस्टेंस, ट्रूडो नीड्स द वोट्स ऑफ द पीपल हु आर अपोज टू इंडिया. वो एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, छोटा सा है लेकिन ऑर्गेनाइज बहुत है. तो अगर वोट जाएगा तो एक साथ जाएगा, और वो पैसे वाला सेगमेंट है. दे हैव गॉट लॉट ऑफ मनी देयर, तो इसलिए उनका पोलिटिकल जो फुटप्रिंट है वो काफी स्ट्रांग है. एंड ट्रूडो नीड्स दैट फुटप्रिंट.
वाई इज एन एंटी इंडिया?
They have lived, वो खालिस्तानी लिबरेशन मूवमेंट में ही सर्वाइव किया है. वही
उनकी क्या फिलॉसफी है? व्हाट आर दे?
खालिस्तान चाहिए उनको. उनको एक भारत से अलग देश तोड़ना है, इसका नाम खालिस्तान होगा, जो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है. मतलब एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट है उनका. बाहर का कपड़ा ये है, अंदर का ये है कि इट्स अ पाकिस्तान फंडेड मूवमेंट एंड पाकिस्तान इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू यू नो मेस अप इंडिया. पाकिस्तान की एक ही आइडेंटिटी बहुत साल से रही है, जब से आज़ाद हुआ है, कि हम भारत नहीं है, हम पाकिस्तान है, और हमारी आइडेंटिटी इज नॉट इंडिया. सो वी आर एवरीथिंग विच इज नॉट इंडिया इज अस. सो हमेशा उनका एक ही कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है कि हम कहाँ छोटा सा भी हम इंडिया से अपने आप को बेहतर दिखा दें या इंडिया में थोड़ा सा मैसअप कर दें. सो दैट हैज़ बिकम आई थिंक एन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. एंड आई थिंक स्पेशली आफ्टर बांग्लादेश का अलग हो गया, बांग्लादेश जब से तो एक भाषा पर आधारित देश पाकिस्तान से अलग हुआ, और उसमें इंडिया का सपोर्ट बांग्लादेश को था, तो पाकिस्तान थिंक्स कि अब हमारी लेजिटिमेट राइट है कि हम भी इंडिया को तोड़ेंगे, या तो भाषा के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या किसी आधार पे. सो वो खालिस्तान में पंजाब को सपोर्ट, वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं पंजाब में. वो एक अलग कश्मीर राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर में. भारत में जहाँ पर भी कोई भी ऐसा बोल देगा कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, वहाँ पाकिस्तान का सपोर्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है. आ जाता था, अब तो सपोर्ट करने की खैर आई थिंक उसका कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी. अल्टीमेटली सारा दुनिया ने देखा जो हुआ, और जिसका अटेंशन दूसरे का डैमेज करना होता है वो अपना भला नहीं कर पाता. और चंद्रयान 3 के बाद तो हमने देखा ही, पाकिस्तान की न्यूज़ तो आपने भी सुनी होगी कि किस तरह से पाकिस्तान में मुझे रिग्रेट दिखा एक कि हिंदुस्तान किधर पहुंच गया. भारत जो है चंद्रमा तक पहुंच गया, और हम अभी चंद्रमा देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातें हम कर रहे हैं. एंड पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो यही कह रही थी कि हम बिजली नहीं ला पा रहे हैं यहाँ पर, और भारत जो है चंद्रमा तक पहुंच गया.
हाँ, वो इनफैक्ट देयर इज वन मीम इज गोइंग वेरी वेरी वेरी
हम भी चंद्रमा पर हैं,
हम भी चंद्रमा पर हैं. चंद्रमा पर बिजली है वो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पानी है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हो गई ना, हम सेम ही है, क्या कर दिया उन्होंने पहुंच के. दैट मीम वाज लाइक वेरी वेरी
वायरल. हां, किसी कोई आम आदमी था, ही वाज जस्ट अ कॉमनर जिसका इंटरव्यू में उसने ऐसा बोला.
इट वाज वेरी रैंडम, वेरी फनी. एंड देन इट्स आई डोंट नो व्हाट पीपल एंजॉय. इट्स जस्ट लाइक कि वहां पे लाइन से हजारों लाखों, उसमें पाकिस्तान में वायरल नहीं, वो इंडिया में वायरल है. पीपल आर एंजॉइंग दैट मोर. टॉकिंग अबाउट चंद्रयान, आई वांटेड टू आस्क दिस. हम लोग अभी इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इसरो ऐसा क्या कर रहा है जो नासा या दूसरी वर्ल्ड की चीज़ें नहीं कर पा रही है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही. हम सस्ता क्यों पहुँचा पा रहे हैं? लाइक हाउ आर वी चीपर देन एवरीबडी एल्स? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी बेटर है? क्या मतलब क्या बेटर है हमारे पास जिसकी वजह से हम सस्ते बना पा रहे हैं?
लोग अच्छे हैं, लोगों का पर्पस अच्छा है, और ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है वो अच्छा है. एंड लेट मी एलैबोरेट. ठीक है, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो डिप्रेविटी में हुई थी, 1960s में हुई थी. उस समय 1960 के दशक में, 64-65 में, जब इंकोस्पार बना था, जो बाद में इसरो बन गया 1969 में, इंकोस्पार की जब स्थापना हुई थी तो भारत के पास खाने को खाना नहीं होता था पूरा. हम विदेशी लोगों से खाना मंगाते थे और तब हम अपने लोगों को खिलाते थे, और कई बार इस चक्कर में हमारी काफी आर्म ट्विस्टिंग होती थी, स्पेशली बाय द यूएस. तो जैसे हम कुछ ऐसी बात करते थे कि जो यूएस को पसंद नहीं होती थी, तो यूएस क्या करता था, जो हमारे लिए खाना आ रहा होता था शिप से, कैंसस से आता था यूएस में, कैंसस में काफी फार्म्स हैं, उनका एक स्टेट है, जो शिप आ रही होती थी उसको वो डाइवर्ट कर देते थे रातों रात. और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे फूड मिनिस्टर्स, हमारी पूरी कैबिनेट डर जाती थी इस बात से कि जो खाना यूएस से आ रहा था वो डाइवर्ट हो गया क्योंकि हमने कुछ उनके खिलाफ बोल दिया. सो खाना वॉज यूज हमारा मुंह बंद रखने के लिए कि हम सिर्फ उनके मतलब की बात करें, उनके फायदे की बात करें. उस देश ने 1960s में इसरो की स्थापना करी. सबसे पहले हमारा पर्पस क्या था? इसरो का पर्पस ये था कि हम अपने देश में जो किसान हैं और जो मछुआरे हैं, हम उनको मदद पहुंचा सकें, जिससे हमें जो खाने की किल्लत हो जाती है, क्योंकि कभी मानसून इज अनप्रिडिक्टेबल, इतना अनप्रिडिक्टेबल कि अगर किसी का मूड अनप्रिडिक्टेबल होता है, हम बोलते हैं कि उसका मूड मानसून जैसा है. सो मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल. नॉर्थ इंडिया की सारी जो क्रॉप्स है वो मॉनसून पर, यानी उनकी जो बरसात है उस पर निर्धारित होती है, डिपेंडेंट है टोटली. सो जो वो निर्भर करती है, इस वजह से मॉनसून अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो फसल भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती थी. तो ये फसल के साइकिल्स आते थे. जब भारत ने देखा कि अंतरिक्ष से अगर हम धरती के बादलों का और धरती के क्लाइमेट का और वेदर का फोरकास्ट कर सकते हैं, तो हम किसान को ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस वक्त आपको बीज बोना चाहिए क्योंकि बरसात होने वाली है. तो हम किसानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसरो बनाया, खाने के लिए बनाया, ठीक। सेकंड, मछुआरे हमारे जाते थे और भारत, ये जो दोनों ही हमारे जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी काफ़ी वायलेंट वाटर बॉडीज़ हैं, इसमें काफ़ी लहरें आती हैं, तेज़ आती हैं, और हमारे पास कोई बहुत एडवांस शिप्स नहीं थी, सो हमारी फ़िशिंग बोट्स कई बार लॉस्ट हो जाती थी, तो एक हज़ारों की संख्या में मछुआरे छूट जाते थे, खो जाते थे, और उनमें से बहुत से लोग मर जाते थे। उनको बचाने के लिए हमने इसरो की स्थापना करी। इतना ऐसा, और बजट तो कम थे ही, बजट हमारे और भी कहीं जाने थे, ये तो छोटा सा स्पेस मिशन था, वो तो डॉक्टर सारा भाई जैसे महान हमारे वैज्ञानिक सोच वाले लीडर्स थे, तो दे वर एबल टू डू इट, बट इतना कम हमारे पास पैसा था कि इनिशियली तो हमने एक चर्च में शुरू किया। मैरी मैग्डलिन चर्च की कहानी तो सभी को पता होगी, कैसे एक चर्च में गए डॉक्टर सारा भाई और उनके साथ एक यंग डॉक्टर गलाम थे, उनकी उम्र बहुत कम थी, 30s में थे तब वो, और वो कहते हैं मेरा शुरू शुरू के दिन थे इसरो में, और हम गए वहाँ पर, देखा एक मछुआरों का गांव था, लेकिन उसी जो गांव था वहीं पर मैग्नेटिक इक्वेटर बगल में था उसके, वो मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में ही आपको लॉन्च करना होता है, तो हमें अब ये मछुआरों का गांव चाहिए था, तो मछुआरों का गांव कैसे लें? एक तरीका तो ये है कि आप गवर्नमेंट को बोल दीजिए ऐसा भटवा दो, सबके घर उजाड़ दो, लेकिन वो इसरो नहीं कर सकता और वो भारत नहीं करता, तो इसरो ने ये नहीं किया। तो विक्रम साराभाई और डॉक्टर कलाम गए रेवरेंड फादर पीटर परेरा के पास, जो ये मैरी मैग्डलिन चर्च के फादर थे, उसके चीफ प्रीस्ट थे, और उनको समझाया ये बात कि यहाँ पर हम रॉकेट लॉन्च करेंगे और यहाँ पे हम उसके बाद उस रॉकेट से इन्हीं मछुआरों को फ़ायदा होगा। सो फादर पीटर परेरा ने बोला कि ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हो मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आप ऐसा करो, आप संडे को आओ, संडे को मास होगी यहाँ पे, सब लोग आएंगे, फिर हम बात करेंगे। संडे को गए डॉक्टर कलाम और उनके बॉस डॉक्टर सारा भाई, तो फादर पीटर परेरा ने प्रेयर्स के बाद बोला, सारे सैकड़ों मछुआरे बैठे थे, उनको बोला कि देखो ये दो लोग हैं, ये एक हैं डॉक्टर सारा भाई और एक हैं कलाम, ये दोनों साइंटिस्ट हैं और ये कुछ आसमान में कुछ करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं समझ में आया पूरा, लेकिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे देश को फायदा होगा और जिससे आपको भी फायदा होगा, और सारे मछुआरों को जो समुद्र में खो जाते हैं वो खोएंगे नहीं, उनको हम वापस ला पाएंगे, लेकिन इसके लिए उनको एक चीज़ चाहिए, और जैसा हर जगह होता है कि हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है, इसकी कीमत यह है कि आपको अपना घर देना पड़ेगा इनको, ये गरीब मछुआरे हैं, लेकिन इसके बदले वो आपको घर दे देंगे, एक अलग कॉलोनी बनेंगी वहां पर रहेंगे, लेकिन आपको अपना घर अभी देना पड़ेगा, और तो और ना सिर्फ आपको घर देना पड़ेगा, मुझे भी अपना घर देना पड़ेगा, और ना सिर्फ मुझे अपना घर देना पड़ेगा, ये भगवान का घर है, इसको भी अपना घर देना पड़ेगा, भगवान का घर भी जाएगा इसमें, क्योंकि चर्च भी जाना था उसमें, तो बताइए मैं क्या करूँ। सो डॉक्टर कलाम रिकॉल्स, वो कहते हैं कि कुछ दिन कुछ सेकेंड तक शांति रही और फिर सब ने एकदम से बोला आमीन, और इट वॉज नॉट स्लो, इट हैपेंड वेरी फास्ट, लेकिन जनता के अप्रूवल से बना, और आज उसके तुरंत बाद ये जो मैरी मैग्डलिन चर्च था वो जो है जहाँ पे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं वो जगह बना, जो फादर पीटर परेरा का घर था वहीं पे डॉक्टर सारा भाई का ऑफिस बना, और आज भी अगर आप वहाँ जाइए तो वहाँ पे इसरो का म्यूजियम है, लेकिन शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, तो इसरो की शुरुआत ऐसे हुई थी। जिस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत ऐसे होती है, हर इंस्टीट्यूशन में कैरेक्टर होता है, एक जीव होता है, इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो लाइक ए लाइव बींग, सो इसरो की जो ईथॉस है, जो कैरेक्टर है, जो हार्ट है, इज ऑन सर्विस, सर्विस टू द नेशन एंड द पीपल, विच ऑल्सो इंक्लूड्स मिनिमम एक्सपेंस टू द कंट्री, और इसीलिए आज भी इसरो इज दैट वे। इसरो में कोई किसी को एस्ट्रोनॉमिकल सैलरीज नहीं मिलती हैं, सरकारी सैलरीज होती हैं, और किसी भी कॉरपोरेट से आप कंपेयर कर लीजिए तो काफ़ी कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसरो से पोच कर करके लोग चले जाते हैं, बहुत कम एट्रिशन रेट है, क्यों? क्योंकि पीपल बिलीव इन वॉट दे डू एंड दे आर प्राउड ऑफ वॉट दे डू, सो दैट्स वाई वी आर एबल टू इवन टूडे एबल टू डू दिस, एंड चंद्रयान 3 वॉज एक्सेप्शनली एक्सेप्शनल थिंग विच वी अचीव फॉर द फर्स्ट टाइम,
एंड दिस गेट्स मी टू अ न्यू गोल, बाय द वे आई एम इम्प्रेस्ड बाय द स्टोरी, आई डिडंट नो दिस, लाइक आई एम सो मूव्ड बाय द स्टोरी, एंड दिस इज समथिंग वेरी like it gives me a proud feeling, though I was not part of it, but because it happened in my country and it happened for us, it fills me with a sense of pride and like a little joy, you know, yeah. I don't know how to express this. Yeah. It's very emotional, exactly. Yeah. I don't know how to express it. It's so good. It's so nice. But here's a question. ki Chandrayaan matlab hame chand pe bhejna kyun hai kuch bhi? Hum kyun celebrate karte hain?
क्या होता है, मतलब ये और हम पहुंच गए चांद पे, पहुंच गए हम साउथ के साउथ पोल पे पहुंच गए जहां पे कोई देश नहीं पहुंच पाया, तो हम खुश क्यों हो रहे हैं, मतलब इससे क्या होता है स्पेसिफिकली? इनफैक्ट यू नो देर आर फ्यू न्यूज चैनल्स विच इज फनी टू रीड बट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन फॉर बहुत नॉर्मल जनता के लिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं और ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके चांद पे पहुंचा रहे हैं, क्या जरूरत है चांद पे करने की, जरूरत क्या यहीं सॉल्व कर लो, राइट? दिस इज अ वेरी नॉर्मल जनता जिसको नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्यों होती है, लाइक एक्सप्लेन अस।
सो सी, पहली बात तो जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसरो इज देयर, इट वॉज मेड फॉर हेल्पिंग पीपल हु ग्रो फूड, किसान और मछुआरे, और इसरो का कॉन्ट्रीब्यूशन इन अश्योरिंग इंडियाज सेल्फ रिलायंस ऑन फूड बहुत बड़ी है। आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स कि भारत का जो इथॉस है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अ कंट्री है, दैट हैज गॉन अप सेवरल टाइम्स नाउ। अब हम उन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें हम करने वाले दुनिया के अव्वल यानी पहले देश बने, तो दैट्स अ बिग स्टेप। साउथ पोलर रीजन पर जाने के बहुत कारण है। साउथ पोल रीजन जो मून का है, पता है वो जो दुनिया जो सौरमंडल का हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड बिगेस्ट इक्वेटर है, वो लगभग 13 किलोमीटर डीप है, वो क्रेटर वहीं पर है। सो आप सोच सकते हैं कि सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थ से कंपेयर ही नहीं कर रहा, सोलर सिस्टम के सारे 8 ग्रह, इतने सारे उपग्रह मिला करके सेकेंड बिगेस्ट क्रेटर इज ऑन मून इन दैट प्लेस इन साउथ पोलर रीजन। तो इन क्रेटर से हमें इतना प्रेम क्यों होने लगा है?
मैं ये पूछ रहा
हूँ, है ना? उसका कारण कुछ और है। कारण ये है कि मून पर देर इज नो एटमोसफियर, सो अर्थ पे एटमोसफियर है, करीब 100 किलोमीटर तक एटमोसफियर रहता है, हवा है, हवा धीरे धीरे कम होती जाती है, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। मून पे देर इज नथिंग, देर इज नो गैस, सो मून पे कोई गैस नहीं है, और मून एक बेहद ठंडा बॉडी है। जो मून का जो टेम्परेचर है, अगर सूरज चमक रहा है तो फिर भी थोड़ा 20-30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर सूरज नहीं चमक रहा है तो तुरंत गिर के वो -220-230 डिग्री चला जाएगा, इतना फ्लक्चुएशन होता है, विच इज अ गुड थिंग। गुड थिंग ये है कि अगर मून पे पानी है, लिक्विड वाटर अगर मैं ले लूँ, ऐसे लिक्विड वाटर अगर मैंने ले लिया और इससे मैं एटमोस्फेरिक प्रेशर हटा दूं, अभी इसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि हवा है, अगर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर हटा दूं तो क्या होगा, ये वाटर इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगा और ये वेपराइज होकर के वाष्प बन के यानी गैस बन करके निकल जाएगा, और मून पे होता तो ये निकल जाता बाहर स्पेस में चला जाता, लॉस्ट फॉर एवर। लिक्विड वाटर कैनॉट सर्वाइव ऑन मून, ओनली सॉलिड वाटर कैन, यानी आइस। आइस कैसे बनती है? जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो अगर कोई क्रेटर है जो ऐसे जिगजैग है, जिगजैग है, तो कोई एरिया ऐसा होगा उसमें जहां पे सूरज कभी नहीं चमका होगा, यानी कि बिलियंस ऑफ ईयर से वहां पे सूरज की एक किरण नहीं पहुंची होगी, और वहां पर टेम्परेचर बहुत नीचे होगा, और उस जगह पर जो भी वाटर होगा वो फ्रोजन फॉर्म में बिलियंस ऑफ ईयर से पड़ा होगा। इसीलिए हमें उस जगह जाना है जहां सूरज की किरण कभी पहुंचती ही नहीं, और वो शैडो एरिया होगा किसी क्रेटर का, और उस क्रेटर के शैडो एरिया से ही हमें पानी मिलेगा। और मून पे पानी है ये हमें पता है, मून पे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पानी है, कहाँ है एग्जैक्टली ये नहीं पता हमें, लेकिन पोल्स पर ही है, वहीं कहीं है किसी पोल पर। जैसे ही पानी मिल जाएगा आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, आपकी लिविंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, वाटर में बाइंडेड हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन से आप फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट्स फर्दर फ्यूचर में रॉकेट्स लॉन्च करोगे आप मून से ही, और ऑक्सीजन भी होती है जो आपके लिए ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए द सर्च फॉर हाइड्रोजन ऑफ H2O which is water will only happen उन जगहों पे जहां पर बहुत सारे क्रेटर्स और माउंटेन्स हैं, और इसलिए हम साउथ पोल रीजन में गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मून पर जो है वो है Helium-3, वो अभी हमने खोजी नहीं है और उसकी खोज अगले 5 साल में बहुत चल जाएगी। Helium-3 क्या होता है? हीलियम पहले समझिए क्या होता है। हीलियम एक बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ये हीलियम होता है, केमिस्ट्री में हमने सबने पढ़ा है। इसमें अगर एक न्यूट्रॉन डाल दें तो ये Helium-3 बन जाता है, यानी हीलियम का भाई लेकिन थोड़ा भारी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हीलियम वाली हैं। Helium-3 से आप जब हम फ्यूजन पावर डिस्कवर कर लेंगे, और वर्ल्ड इज अबाउट टू डिस्कवर फ्यूजन पावर, और जैसे ही वर्ल्ड फ्यूजन पावर डिस्कवर कर लेगा आपके सारी एनर्जी की क्राइसिस समाप्त। Helium-3 को अगर हम फ्यूजन पावर में डाल देंगे तो Helium-3 गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी, और Helium-3 मून पर है, अर्थ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मून पर जो डस्ट है, मून इज कवर्ड विद Helium-3। इतनी Helium-3 है कि लगभग 11 मिलियन टन्स ऑफ Helium-3 इज प्रेजेंट ऑन मून, मोस्टली अगेन ऑन द पोलर रीजन। और Helium-3 इतनी है मून पे कि अगर इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो धरती पे लगभग 40,000 साल तक हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मून विल बिकम आ पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर, मून विल बिकम आर लॉन्च स्टेशन ऑफ द फ्यूचर, देर बी पीपल हु लिव ऑन मून, एंड ऑल दैट विल हैपन वंस वी स्टार्ट डिस्कवरिंग थिंग्स ऑन द पोल एंड इसलिए हम पोल पे गए. और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ट्रीटी है दुनिया में जो ये कहती है कि आप इंटर स्पेस में, आप अंतरिक्ष में और एंटार्क्टिका में भी आप अपनी टेरेन क्लेम नहीं कर सकते. मतलब ये नहीं कह सकते कि इंडिया की टेरिटरी है, ये यूएस की टेरिटरी है. लेकिन ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर होगी, आई थिंक 2032 या 2034 में एक्सपायर हो जाएगी. जैसे ही एक्सपायर होगी, दुनिया के देश कहना शुरू कर देंगे कि मून पे हम जहां गए वो मेरी जगह है, दैट लैंड इज माइंड बिकॉज आई वेंट देयर. जब ये होगा तो इंडिया कैन स्ट्रेटेजिकली क्लेम कि जो मून का साउथ पोल रीजन है वो हमारा है, या उसमें से कुछ हिस्सा हमारा है, और उसमें जो भी माइनिंग होगी उसमें हमारे राइट्स होंगे. सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. आइए अगले 10-15 साल में हमें पता लगेगा इसका नतीजा क्या होता है. लेकिन मुझे लगता है कि आज के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से 15 साल बाद इस मिशन को देखेंगे और कहेंगे कि ये इंडिया का गोल्डन मोमेंट था, बिकॉज इसी की वजह से मून का सबसे मिनरल रिच रीजन जो है साउथ पोल, उस पर भारत अपना क्लेम निकाल सकता है, बोल सकता है कि हमारा क्लेम है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली. तो इसलिए जो भी सोच रहा है कि ये 800-900 करोड़ रुपये बर्बाद हुए, आप इसको ऐसे देखिए, एज एन इन्वेस्टमेंट देखिए, 10 साल बाद में आपको उस 800-900 करोड़ के कम से कम 1,000 या 10,000 गुना आपको उसके वर्थ मिनरल्स वहाँ पे आप क्लेम स्टेक कर सकते हैं. इसलिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मून.
बट हियर इज अ बेसिक क्वेश्चन अगेन, ओके, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. यू सेड कि पानी उधर है, अर्थ पे भी तो 70% इज वाटर. Why this water is different than that water?
लेके कैसे जाओगे आप? How will you take water from Earth to the Moon?
But
Earth...
why do you want to take water from Earth to Moon? Ultimately, तुम्हें Earth पे सब लेके आना है ना?
नहीं, मेरे को Moon का water Moon पे रखना है.
Okay.
वहाँ उसको तो मैं थोड़ी ना Earth पे लाऊंगा. Moon के water को मैं dissociate करूंगा, उसको break करूंगा और उससे hydrogen निकालूंगा और उससे oxygen निकालूंगा. इस hydrogen को मैं rocket fuel बनाऊंगा, और oxygen भी rocket fuel बनती है क्योंकि oxygen जलाने के काम आती है. ये भी बनेगी, और ऑक्सीजन कैन बी यूज फॉर नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग एज वेल. सो मैं इस ऑक्सीजन को बनाऊंगा, इस हाइड्रोजन को यूज करके मैं वहां पे पावर प्लांट लगा सकता हूँ या कुछ भी लगा सकता हूँ, और उससे ज्यादा मैं वहां से रॉकेट उड़ा सकता हूँ. और मून से रॉकेट उड़ाना सस्ता पड़ेगा, काफी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी कम है वहां पर. मून पे और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनसे मैं फैक्ट्री बना करके आई कैन मेक सम पार्ट्स. सो आई कैन हैव अ होल, यू नो, सिविलाइजेशन जिसमें कुछ तो ह्यूमंस होंगे बट ज़्यादातर रोबोट्स और ह्यूमनॉइड्स होंगे, और वो मिल करके अर्थ के लिए, जो हमारी सिविलाइजेशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसके लिए मून से रॉकेट्स लॉन्च कर रही होगी वहाँ पर. हम मून से पानी अर्थ पे नहीं लाएंगे, दैट इज़ नॉट नीडेड. मून से हीलियम-3 हम अर्थ पे ला सकते हैं, और इवन बेटर, हम हीलियम-3 से एनर्जी मून पे बनाएं, और भविष्य में हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं कि हम लेज़र टेक्नोलॉजी या लेज़र बीम या माइक्रोवेव यूज़ करके इस एनर्जी को अर्थ पे वापस बीम कर देंगे. तो पावर प्लांट मून पर होगा और रिसेप्शन अर्थ पे होगा. सो समथिंग लाइक दैट विल हैपन. एंड इट्स ऑल्सो आर सेफ्टी वेल्व. सी, प्लैनेट्स आर वेरी फ्रजाइल. वी लव अर्थ, अर्थ इज अ ब्यूटिफुल बॉडी, बट वी हैव सीन हाउ इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड अर्थ हैज डिस्ट्रॉयड लाइव. अर्थ हैज गॉन थ्रू मेजर, जिसको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स. द लास्ट वन हैपेंड इन द जुरासिक एरा, जब एक एस्टेरॉयड आकर के अर्थ पे क्रैश कर गया था, और पूरा जो डायनासोर की स्पीशीज थी उसमें से महज उड़ने वाले डायनासोर छोड़ करके बाकी सब मर गए. उड़ने वाले डायनासोर बर्ड्स बन गए और आज बर्ड्स के रूप में घूम रहे हैं, लेकिन बाकी सारे डायनासोर इन अ मैटर ऑफ अ सेकेंड ऑफ, यू नो, इम्पैक्ट, तुरंत अर्थ डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई, और विद इन अ फ्यू ईयर्स एवरी डायनासोर वॉज किल्ड. सो अर्थ इज फ्रेजाइल, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एनी प्लानट इज फ्रेजाइल. इसलिए किसी स्पीशीज को अगर हमेशा जिंदा रहना है एज अ स्पीशीज, तो उसको अलग अलग प्लैनेट्स पे जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली अलग अलग सोलर सिस्टम्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सोलर सिस्टम जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी 4.5 बिलियन साल बाद खत्म हो जाएगा. सो हमें अलग सोलर सिस्टम्स पे जाना होगा, और ना सिर्फ अलग सोलर सिस्टम्स पे जाना होगा, एंड्रोमेडा नाम की एक गैलेक्सी है जो हमारी अपनी मिल्की वे के बराबर या थोड़ी बड़ी है एक्चुअली, और वो बहुत जल्दी उससे कोलाइड होने वाली है. बहुत जल्दी मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन वो कोलाइड होगी. अल्टीमेटली हमें अपनी गैलेक्सी छोड़ करके भी कहीं और जाना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली स्पीशीज, इफ इट हैज टू सर्वाइव, इट हैज टू कीप मूविंग. जो बोलते हैं ना, वो एक्शन मूवीज में बोलते हैं, टू द वे टू सर्वाइव इज टू कीप मूविंग. सो यू हैव टू कीप मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेज टू लिव, एंड दैट्स वाई सर्वाइवल इज ऑल्सो वन रीजन वाई यू नीड टू एक्सपेंड.
कमिंग बैक टू अ पॉइंट जो आपने अभी बीच में बोला, फ्यूजन.
या
लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने थोड़ी बात
अच्छा करी थी हमने, राइट? द फ्यूजन इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज टेलिंग
न्यूक्लियर फ्यूजन.
यस यस.
एक पहले बताओ, टू रिफ्रेश, है क्या, होने क्या वाला है? और आपने बोला कि बहुत जल्दी बन जाएगा, मतलब बहुत लाइक कंट्रीज आर नियर दिस, कुछ ना कुछ हो जाएगा, और इंडिया इसमें कहाँ प्लेस्ड है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट, लाइक स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स.
ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो.
ना, क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन?
सो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फ्यूजन एंड फिशन. फिशन नाम से जैसा लग रहा है, फिशन का अर्थ होता है किसी चीज का टूट जाना, फ्यूजन का अर्थ होता है किसी चीजों का साथ आना, ठीक। फिशन कैसे होता है, एक हैवी आपने यूरेनियम लिया जो बहुत भारी होता है, यूरेनियम लोहे से करीब 5 गुना भारी होता है, तो इतना बड़ा यूरेनियम और इतना बड़ा लोहा यूरेनियम लगभग 5 गुना भारी होगा, और यूरेनियम टूटता है, जब उसके मॉलिक्यूल जो है, जो उसका एटम है, जब वो टूटता है तब उससे एनर्जी बनती है और उसको हम फिशन बोलते हैं। ऐसे ही बम बनता है तो हिरोशिमा नागासाकी होता है, और यही आज हमारे जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है।
तो सारे बम ऐसे बनते हैं,
बम भी ऐसे बनते हैं, अगर आप बम को कंट्रोल कर लो तो पावर प्लांट बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, विच इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, आप छोटे मॉलिक्यूल लेते हो, हाइड्रोजन इन दिस केस, और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आप साथ जोड़ देते हो और वो जुड़ करके कुछ बन जाते हैं, हीलियम बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फ्यूजन एनर्जी।
ओके,
फ्यूजन इज मोर पावरफुल देन फिशन, इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर पावरफुल देन यूरेनियम बॉम्ब। लेकिन इसको कंट्रोल करना हमें नहीं आता, इसको कंट्रोल करना आता है, इसको कंट्रोल करना नहीं आता, इसको हम सीख रहे हैं। तो अब हमने इसको सीखने में पहले कुछ बड़े कदम लेने शुरू कर दिए, यानी लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ कि हम पॉजिटिव फ्यूजन एनर्जी निकाल पाए इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब एक कंट्रोल्ड रिएक्टर में, बम की तरह नहीं, कंट्रोल्ड रिएक्टर में हम एक पॉजिटिव एनर्जी निकाल पाए, यानी कुछ पॉजिटिव एनर्जी निकली जिसको हम यूज कर सकते थे। अब इसी को हमें स्केल अप करना है, आने वाले 15 साल में हम फ्यूजन पावर को मास्टर कर लेंगे, और हम का मतलब सारी दुनिया कर लेगी, और इसमें इंडिया को बहुत फायदा है, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो है, जब इसको मास्टर कर लेंगे उसके बाद हमें ना तो फिशन रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना कोल की, ना थर्मल की, ना हाइड्रो की, और ना किसी भी और फॉर्म की, इनफैक्ट इवन सोलर और विंड की भी जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी फिर।
मतलब जो आज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे
ऑल इलेक्ट्रिसिटी
चाहिए होती, थर्मल प्लांट से चाहिए होती, हाइड्रोजन प्लांट्स जो
कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको सिर्फ फ्यूजन चाहिए, और फ्यूजन का जो फ्यूल है वो सी वाटर है, एक क्यूबिक मीटर।
तो टेक्निकली फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तरफ,
नियरली फ्री,
नियरली
फ्री, प्रोसेस का तो चार्ज होगा, बट इफ यू लुक एट 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लगभग उतने से थोड़ा ज्यादा होगा, और इतना ही एक क्यूब बना लीजिए 1-1 मीटर का, और सी वाटर इसमें भर दीजिए। इस सी वाटर में देर इज अ वेरी स्पेशल पदार्थ, उसका नाम होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसी हाइड्रोजन का बड़ा और भारी भाई होता है ड्यूटेरियम, इसमें एक न्यूट्रॉन डाल दिया, ये ड्यूटेरियम बन गया। सो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन से भारी होगा, डबल वजनों का होगा। ड्यूटेरियम जितना भी बना है ब्रह्मांड में वो तब बना था जब बिग बैंग हुई थी, उसके बाद से ड्यूटेरियम नहीं बनता। लेकिन ड्यूटेरियम की फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद भी, यानी 14 बिलियन साल पहले ड्यूटेरियम बना और अब उसके बाद बिल्कुल नहीं बना, इतना सारा ड्यूटेरियम ब्रह्मांड में है और अर्थ पर है कि हम उसका यूज बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं फ्यूजन में, क्योंकि ड्यूटेरियम गोज थ्रू फ्यूजन। समुद्र के पानी में 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर में लगभग 33 ग्राम ड्यूटेरियम होता है, इन दिस ब्लॉक 33 ग्राम्स ड्यूटेरियम। ये 33 ग्राम्स ड्यूटेरियम को अगर हम परफेक्टली, और परफेक्ट तो नहीं होगा बट मान लेते हैं कि हम परफेक्टली इसको हम फ्यूजन पावर में ले जाएं, जिस दिन हम ऐसा कर पाए उस दिन हर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ समुद्र के पानी में इतनी एनर्जी है जो लगभग 7 लाख किलोवाट आवर्स है। 7 लाख किलोवाट आवर्स कितनी है कि दिल्ली की सारी बिजली, सारी स्टेट की बिजली दिल्ली के आप 15 मिनट तक चला सकते हो 1 क्यूबिक मीटर सी वाटर में। इतने में 15 मिनट बिजली दिल्ली में, और समुद्र में तो पानी पानी है, और भारत के तट हैं, भारत तो एक बहुत ही कोस्टल लैंड है, हमारे पूरे कोस्ट हैं साउथ में, हमारे रिवर्स में है, तो पानी में इतनी शक्ति है, होता है जल ही जीवन है, तो जल ही ऊर्जा है। बट फ्यूजन पावर हमें सीखनी पड़ेगी, और हमने लास्ट ईयर पहली बार फ्यूजन पावर सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट करी थी, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में वी वुड बी एबल टू डू इट कमर्शियली वायबल वे में। और जैसा ही ये कर लेंगे तो आपके पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी जो निकलती है फ्यूजन पावर से वो तो हाइड्रोजन, वाटर और हीलियम है, विच इज नॉन पोल्यूटिंग गैस। जो इनपुट होता है वो क्या होता है, समुद्र का पानी होता है, तो वो तो अवेलेबल है चारों ओर। सो ना सिर्फ नियर फ्री होगी बट ऑल्सो नियर फ्री फ्रॉम, और इनफैक्ट टोटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन भी होगी। एनर्जी की हमने इक्वेशन जब क्रैक कर ली ना दुनिया के लिए, तो हम बहुत जो नेक्स्ट लीप, अभी हम क्या करते हैं, हम तो मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़ की एनर्जी निकालते हैं। पेट्रोलियम और कोल क्या है, मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़, उनकी डेड बॉडी से हम एनर्जी निकालते हैं। फ्रॉम दैट द लीप टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट
From sea water.
From sea water. that would be colossal. So 15 साल में या 10-15 साल लगेंगे.
But don't you feel like so isn't solar better? कि हर घर पे तो ऐसे ही आ रही है.
Solar unpredictable है. It's good, but it's good for now. But if you are able to get an unsurmountable free power, जिसमें कोई समुद्र के पानी से आ रहा है, समुद्र का पानी आपको 24 घंटे अवेलेबल है, लार्ज सप्लाई में अवेलेबल है, सोलर पावर 8 घंटे चलता है, 16 घंटे तो रात या शाम होती है, बादल आ गए तो दिक्कत. और सोलर को बनाने में जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल इज ऑल्सो नॉट एनवायरमेंटली दैट फ्रेंडली. इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक ग्लास एंड दैट एनर्जी कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. सो नेट इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सोलर ऑपरेशनली नेट जीरो कार्बन एमिशन कर रही है, बट जो प्रोडक्शन है सोलर पैनल का दैट इज स्टिल वेरी कॉस्टली एंड इट इज डन मोस्टली इन चाइना. So India does not produce those many solar panels. We are still struggling with that. But this will be far better. और आप किसी भी planet पे है ना, पानी किसी ना किसी form में बहुत planets पर है. So moon पे है ice, Mars पे icy ice है, बहुत ice है. ऐसे छोटे छोटे उपग्रह हैं, Enceladus नाम का एक उपग्रह है जैसे, उसमें पूरी ice की परत है, उसके नीचे पानी पानी है. Titan जो you know Thanos का planet Titan में जो solid surface है वो all ice है. तो ब्रह्मांड में आपको पानी और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम हर जगह मिल जाएगा. सो व्हेन यू एक्सपैंड अक्रॉस सिविलाइजेशंस इट बी मच बेटर. यू नो सोलर पावर मे नॉट वर्क दैट वेल इफ यू गो टू मार्स बिकॉज सोलर रेडिएशन कम है. तो सोलर पावर इज गुड फॉर नाउ बट इट्स अ स्टॉप गैप. इवेंचुअली यू नीड टू डू फ्यूजन पावर यूजिंग ड्यूटेरियम, यूजिंग हीलियम 3, यूजिंग ट्राइटियम एंड अदर सच आइसोटोप्स. इंडिया, दैट्स व्हाई आई बिलीव कि इंडिया has to be and will emerge as the global, last time maine bola tha, it will become the global hub for fusion power as well.
Interesting. Okay, one thing, last time we talked about AI technology and lot of stuff, right?
Yeah.
Aur meko is baar baat karni thi about deep fake.
Ah, interesting.
Right? Like I wanted to understand what's going on and how will we cover that. Pehle ye batao deep fake hota kya hai?
Deep fake ka koi aise exact definition dena mushkil hai, but deep fake refers to something which you just cannot distinguish from real at all. So, जैसे for instance, किसी की voice clone कर लीजिए, उसका चेहरा clone कर लीजिए, और उसी के चेहरे पर उसी की voice से उसी के lip sync से अगर आप words निकलने शुरू हो जाएं, according to what you say, it is a deep fake video. ऐसे deep fake आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं.
आज मैं कुछ भी इधर बोल रहा हूँ, मेरा copy होगी.
हाँ, so you would not be able to know कि is Raj Shamani talking or is it Srijanpal Singh who is typing something and there is a clone of Raj Shamani who is talking in Raj Shamani's voice. So this is
threatening for leaders, for politicians, for everybody, right?
Recently, consequences.
तो consequences जैसे वो मान लो elections आ रहे हैं, ठीक है? So एक मोदी जी का कोई deepfake बना सकता है या राहुल गांधी का कोई deepfake बना सकता है, किसी का भी deepfake बनाया और कुछ भी बुलवा सकता है.
कुछ भी बुला सकता है. कुछ भी. और इट्स सो सिंपल यू गो टू वेबसाइट्स विच विल ऑफर यू टू मेक अ डीप फेक एंड यू विल हैव समवन्स डीप फेक इन 5 मिनट्स. 5 मिनट में उसकी लिपसिंग करके उसकी आवाज क्लोन होकर के निकलनी शुरू हो जाती है.
मतलब कोई एक बड़े लीडर की
किसी भी निकाल सकते हो. वो फोटो चाहिए उसको बस. ऑल ही नीड्स, ऑल दिस सॉफ्टवेयर नीड्स नाउ, AI नीड्स इज अ फोटोग्राफ.
आवाज भी उसकी नहीं चाहिए.
आवाज चाहिए और फोटोग्राफ. आवाज ये नहीं कि जो बोलना है वो नहीं चाहिए. आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वॉइस दे दीजिए, वॉइस मॉड्यूलेट हो जाएगी, किसी और लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देंगे और उन्हीं के लिप सिंक में उन्हीं की फोटो पे चलना शुरू हो जाएगा. इट इज़ सो पावरफुल. और ये अभी भी ये शुरू हुआ है डीप फेक के AI टूल्स ओनली अबाउट 6 मंथ्स अगो कमर्शियली वायबल अवेलेबल हो गए हैं. और अगले कुछ महीनों में इट विल ओनली मास्टर इटसेल्फ. सो द बाउंड्री बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट is vanished. मतलब वीडियो को देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि सत्य है. वीडियो cannot be an evidence anymore. It just फोटोग्राफ तो पहले ही नहीं हो सकता रहा, अब तो you know you got software जो कुछ भी बना देते हैं. Similarly videos cannot be and voice and video, all this is, so it's also a very psychologically different world. What do I trust? I can't trust anything. I can't trust your photo, I can't trust your video, I can't trust your voice. Who are you?
Exactly.
Which is real and which is not. वो पुराने जमाने में मूवीज हम लोग देखते थे ना, जिसमें वो स्पाइडरमैन के 2 क्लोन आते थे, सुपरमैन के 2 क्लोन, आप पता ही नहीं कौन सा असली कौन सा नकली. सो वी जस्ट डोंट नो एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु फेस द पब्लिक एंड हुज फॉर होम पब्लिक ओपिनियंस मैटर वेरी रैपिडली. सो जस्ट बिफोर इलेक्शन यू माइट सी अ बराज ऑफ डीप फेक्स. जब तक उसको आप डिसप्रूव करोगे तब तक तो इलेक्शन निकल चुके
हैं.
So deep fake, which I think the Prime Minister very rightly pointed out, is that it's going to have a huge impact Maybe not in this election, but definitely in the next election.
This election, I feel there's going to be have some impact of it.
We have to be
because recently kuch hua tha, kisi politician ka nikla tha deep fake for the fun of it.
हाँ निकला भी था और वो डिफ्यूट भी हुआ था और निकलते भी रहेंगे और कितने निकल रहे हैं आपको पता भी नहीं ना बट देन देर इज नो एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर दिस राइट नाउ अदरवाइज यू हैव डन इट आई कैन ओनली सजेस्ट यू अ बुके ऑफ ऑप्शंस एंड वी नीड टू मिक्स इट अप एजुकेट ए बी अवेयर लोग अभी भारत में मुझे ऐसे लोग मिलते हैं इनफैक्ट मेरे ही फैमिली में सीनियर मेंबर्स वुड बी सच दैट कि अगर व्हाट्सएप पे है तो ये तो सच होगा बट सच तो ये है कि अगर विकीपीडिया पे है तो भी सच नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है गलत हो सकता है कोई भी एडिट कर सकता है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि वेयर कैन दिस हैपन हो कहां सकता है कहां कहां और किस किस रूप में सो अधिकतर लोग वीडियो को फेक नहीं मानते भारत में पता भी नहीं उनको कि डीप फेक क्या होता है सेकंड इज दैट वी नीड देयर हैज टू बी अ पॉलिसी इंटरवेंशन ऑन दिस इंडिया डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ अगेंस्ट प्रोड्यूसिंग डीप फेक्स सो डीप फेक्स को हम डिटेक्ट तो कर भी ले अर्ली तो हम करेंगे क्या That is the other big problem. It's a long, tedious process under the IT Act. It has to be hastened. क्योंकि ये ऐसे तो जिस process से एक तो detect करना ही मुश्किल है शुरू कहाँ से हुआ समझ में ही नहीं आता But जहाँ से अगर शुरू हो भी गया उसके बाद क्या करें नहीं कई बार ये विदेशी सोर्स होते हैं If you look at a lot of deep fakes, not just India, even US में जो deep fakes आते हैं वो offshore होते हैं वो उस देश से नहीं originate होते तो we need international laws to govern deep fakes. हमें डीप फेक्स के लिए इट हैज टू गो बियॉन्ड बॉर्डर्स बिकॉज डेटा तो यही प्रॉब्लम है ना डेटा तो कहीं से भी आ सकता है कोई जर्मनी में बैठ कर डीप फेक बना रहा है और इंडिया में सर्कुलेट कर रहा है तो उसको हमें जर्मनी में पकड़ेंगे कैसे वी नीड टू हैव ट्रीटीज फॉर दिस सो इट नीड्स अ यूनाइटेड नेशन सॉर्ट ऑफ एन इंटरवेंशन अगेंस्ट डीप फेक सो दैट हैज टू बी नंबर टू थिंग विच वी हैव टू डू सो आई थिंक ये सब अगर हम करना शुरू कर देंगे एंड देन आई थिंक एट अ कॉर्पोरेट लेवल एट अ पार्टी लेवल एंड ऑल्सो एज अ एट एन इंस्टीट्यूशन लेवल वी नीड बॉडीज विच कैन पॉइंट आउट दीज डीप फेक्स सो देयर यूज्ड टू बी आई रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी सम साइट्स बहुत पहले हुआ करती थी कि वो ये बताती थी और आज भी हैं कि ये एक आर्टिकल सच है या नहीं है दे वर लाइक मिथ बस्टर्स ऐसे मिथ बस्टर्स आर नीडेड एट एन इंस्टीट्यूशन लेवल बिकॉज फिर मिथ बस्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी नहीं पता सो आई थिंक एट अ गवर्नमेंटल लेवल Different countries need to create bodies which can act and point out कि ये जो चीज़ चल रही है ये deep fake है So अगर आप किसी चीज़ को forward कर रहे हो तो एक बार उसमें जाके check कर लो कि ये सत्य है या ये झूठ है So we need to catch them and you know put them in that repository कि ये नकली है So this is what it is but I think at a very common man's psychological level it will be a huge discord
Exactly
This will create such arguments which will be impossible to tackle
Scary and Maybe the other solution is जो government body जैसे आपने बोला तो maybe हर country या सारी countries मिला के treaty उन लोगों को एक they need to use or they need to take help of AI to spot a fake AI
which is there so there are tools if you go online which can detect for instance कि कोई आपने चीज ChatGPT से लिखी है या नहीं लिखी है so there are AI detecting tools there are also tools which will help you evade the AI police को से बचने के भी tools हैं so there is a chain of these products which are coming and these are very uncontrolled so one thing which I agree with Elon Musk is that you have to have a very serious discussion about AI's impact on humankind. Aur wo hum nahi kar rahe hain, usko hum seriously nahi le rahe hain. That, you know, one of the richest man in the world, we're not taking him seriously.
I think this is a good point. I have a question for you. Maine bola ki because you're very, very optimist, India. तो और सबने ये बोला और मुझे भी लोग यही बोलते हैं तो इसकी वजह से ना मैं क्या करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अबाउट इंडिया कि इंडिया कहाँ पर है कैसे स्टैंड कर रहा है मेरा एज अ यूथ क्या रोल होना चाहिए इंडिया को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ फॉर द कंट्री I think in last 2-3 years I've changed from what am I doing for myself to now what am I doing for the country and it's because I meet people like you and it's because I keep reading like a lot of articles on what's going on. So usme main negative, positive sab padhta rehta hu and then it becomes my responsibility ki main har or like har consumer ko, har viewer ko educate karu in some form or way ki India mein ho kya raha hai और यहाँ पे हम लोग कैसे जीत सकते हैं क्योंकि हम जीतेंगे इंडिविजुअल लेवल पे तो कंट्री जीतेगी राइट
और वर्ल्ड भी जीतेगा
वर्ल्ड जीतेगा ओके
इट्स अ वर्ल्ड विक्ट्री इंडिया इज अ सिविलाइजेशन व्हिच इज एक्सपेंसिव ना हम कभी ये बोलते ही नहीं है कि हम दुनिया पे जीतना चाहते हैं इट इज नेवर बीन आवर गोल टू विन द वर्ल्ड वी वॉन्ट टू इम्बाइब द वर्ल्ड लिसन टू द वर्ल्ड मेक अस अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड अ पार्ट ऑफ अस So it's always been that way. कोई भी सिविलाइजेशन इन्वेडर कोई भी आया क्या हुआ वो आकर के हमारे यहाँ रहना शुरू कर गया और हमने उसके साथ ट्रेडिंग चालू कर दी इन्वेडर्स को भी हमने फॉरगिव कर दिया ट्रेडिंग चल रही है, वो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे कुछ अंदर ही अंदर हमारी डाइवर्सिटी इतनी है कि उसी डाइवर्सिटी में वो कहीं फिट हो गए। वो अगर जो है द पारसीज केम विद देयर ओन फायर, कि हम तो फायर वर्शिपर हैं, इंडिया वॉज नॉट अ फायर वर्शिपर, हमने कहा ठीक है आप अपना टेम्पल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी फायर वर्शिपर हैं, वो रह रहे हैं और हमारी पार्ट है, हमारी इकोनॉमी में पारसीज का रोल बहुत बड़ा है। बट पारसीज का सच्चाई क्या थी? देवर बेसिकली पीपल हु आर आउटकास्ट, वर थ्रोन अवे फ्रॉम द नेटिव लैंड एंड दे केम टू इंडिया एज अ रेफ्यूज एंड वी गेव देम, एंड नॉट ओनली रेफ्यूज, नाउ दे आर टॉपिंग द चार्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड इज हैप्पी, इट्स ऑलवेज बीन द केस। इंडिया का डिक्लाइन इज द वर्ल्ड का डिक्लाइन, बिकॉज एंड हिस्टोरिकली इट हैज बीन द केस, द वर्ल्ड हैज नॉट बीन अ हैप्पी प्लेस व्हेन इंडिया हैज एवर डिक्लाइंड। इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ गुड एंड वी हैव नॉट बीन अ सुपर पावर, तो हमें बनना ही नहीं है। हमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोला विश्व मित्र बनना, इट्स अ वेरी राइट वर्ड, नॉट विश्व गुरु, हमें विश्व मित्र बनना है, हमें लोगों को सिखाना है, जो हमें आता है विल शेयर इट। दैट्स वाई टुडे अफ्रीका इज बिहाइंड अस, डिस्पाइट कि उनके लोन्स चाइना है, चाइना से है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज कंट्रोल्ड है, कई केसेस में तो चाइना इज इवन ओनिंग एसेट्स इन देयर कंट्री, दे आर रिस्किंग टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया एंड स्टैंड बिहाइंड इंडिया। इट्स अ हॉलमार्क टू आर सिविलाइजेशन। लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया था, फॉर एग्जांपल जब वैक्सीन हुआ था, कितने लोगों ने बोला इंडिया में ये खुद तो है नहीं वैक्सीन, खुद को दे नहीं रहे हैं, अफ्रीका भेज दे रहे हैं, ये है वो है। कनाडा को देखो, एक आदमी पे 7-8 वैक्सीन ऑलरेडी खरीदे बैठा है। टुडे व्हाट द वर्ल्ड इज जजिंग, द वर्ल्ड इज सेइंग दिस इज द एग्जांपल, कि दे वर नॉट ओनली केयरिंग फॉर देमसेल्व्स इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस बट ऑल्सो फॉर अस हु कुड नॉट अफोर्ड इट, हु वर नॉट एनीवेयर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इन दैट कोविड वर्ल्ड वेयर एवरीबॉडी वॉज फॉर देमसेल्व्स, and yet we did it. And it's not just one man's action, it's a country's collective consciousness. The conscience of this nation permitted the leader to do it, yeah, and prompted him. Of course, he himself took the decision for which he deserves credit, but it would not have been possible if the people were not only accepting it but welcoming it. And that's why I say India, when India grows, the world is happy.
And then you know, this is so true, we are happy hote. We get happy jab हमने इनकी हेल्प करी, हमने उनकी हेल्प करी, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमने हेल्प करी।
एब्सोल्युटली।
बट टॉक अबाउट समथिंग, आई रेड एन आर्टिकल टुडे, इट्स अ लिटिल डाइवर्स डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक बिकॉज इंडिया पॉजिटिविटी, इंडिया ऑप्टिमिज्म के ऊपर बात कर रहा था। सो आई रेड अ वेरी वेरी सैड आर्टिकल टुडे और काफ़ी नेगेटिव था इंडिया के बारे में। तो हर कोई बात करता है दैट इंडिया विल बिकम वर्ल्ड पावर, इंडिया विल बिकम अ पावर, इंडिया विल बिकम सुपर पावर, ग्लोबली हम बहुत आगे होंगे, हर चीज़ है। पर इंडिया में कैसे आगे होंगे हम जब जो विमेन फोर्स है, हमारी वर्क फोर्स है, दे आर नॉट इवन लाइक 30% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द कंट्री, राइट? सो द आर्टिकल विच आई वॉज रीडिंग टुडे वाज कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसने सबसे ज़्यादा विमेन को एम्प्लॉय कर रखा है, राइट? एंड उनका रेशियो पता है कितना है? फॉर एवरी 100 मैन देर आर ओनली 19.7 विमेन। मतलब अगर 100 लड़कों को जॉब मिली है तो 19.7 ही वुमेन है जो काम करती है, वेर एज पॉपुलेशन में इतना बड़ा गैप नहीं है। लाइक इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन, आई थिंक वुमेन आर मोर देन मैन इन कंट्री राइट नाउ, एज ऑफ नाउ, राइट? तो उसके बाद भी देर आर वुमेन लेस वुमेन वर्कर्स, दैट्स फर्स्ट। सेकेंड इज, विच वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल टू मी, जो मेरे को बहुत ही न्यू चीज़ लगी, बट अगेन सैड एट द सेम टाइम, 72% ऑफ वुमेन वर्कफोर्स जो पूरे 19% की है, उसमें से जो 72% है वो सिर्फ सदर्न स्टेट से आती है, नॉर्थ में तो वो भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 72% जो है वो उससे आती। एंड थर्ड, विच वॉज अगेन सैड, विच इज अगर एक इंसान सेम काम करने के लिए, एक लड़का जो है वो 100 रुपये कमाता है, वेमेन 87 रुपीज़ ही कमाती है। सेम काम, सेम टाइम, सेम वर्क आवर, सेम आउटपुट। सो डू यू थिंक दैट अगर आप दूसरी सिविलाइज, दूसरी कंट्रीज देखो, दूसरी डेमोक्रेसीज देखो, जहाँ पे बहुत तेज़ी से जिन्होंने ग्रो किया है एंड जिनके पास अपॉर्चुनिटी आई है, फिर वो बड़े बने हैं, जैसे बांग्लादेश, चाइना, वहाँ पे बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग, एंड बिकॉज बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग एग्रेसिवली, एकदम से इकोनॉमी में उन जितने भी रिसोर्सेज है हर चीज़ को यूज़ किया और कंट्रीज आगे बढ़ी है, राइट? बांग्लादेश क्लासिक एग्जाम्पल, चाइना का पूरा ग्रोथ तब हुआ जब बोथ द जेंडर स्टार्टेड वर्किंग। तो इंडिया में तो ये हो ही नहीं रहा है। डू यू थिंक इसके बाद भी हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ वो होने वाली है?
आई विल गिव यू अ वेरी अनकन्वेंशनल व्यू पॉइंट ऑन दिस। सी वाइल एज यू, मैंने हम सभी कह रहे हैं कि वेमेन एजुकेशन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट यूजुअली, दैट्स हाउ इट हैपन्स। वेमेन एजुकेशन में वी हैव अचीव्ड बिग स्ट्राइड्स, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। टुडे आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर द कॉन्वोकेशन, आधी से ज़रा जो जनता ग्रेजुएट हो रही होती है वो लड़कियाँ होती हैं, और जो टॉपर्स होती हैं उनमें तो 80-90% लड़कियां होती हैं. सो मेडल पाने वाली
वो काम नहीं करती.
अब काम नहीं, काम भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि देर आर पीपल हु आर रिक्रूटिंग, बट देन द बैरोमीटर इज नॉट करेक्ट. डू यू थिंक सो देर इज अ चॉइस, राइट? अ लॉट ऑफ सोसाइटीज, फॉर एग्जाम्पल यू लुक एट द स्कैंडिनेवियन सोसाइटीज, इन्होंने जो ग्रोथ करी, इन्होंने शुरू में तो वुमेन को वर्कफोर्स में लाए, उसके बाद वुमेन चोज नॉट टू बी इन वर्कफोर्स. सो इफ इट्स मैटर ऑफ चॉइस एंड दैट इज सम वुमेन में भी चूजिंग कि मेरे को घर संभालना है, एंड आई थिंक हमने जो होम मेकर का रोल है, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट योर मदर, आई थिंक द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ वुमन और अ मैन, बट वुमेन आर मच बेटर एट हैंडलिंग चिल्ड्रन आई सपोज देन मैन आर, इज इमेंस इकोनॉमिक. हम प्रोडक्ट उसी के हैं, हम उसी जनरेशन के प्रोडक्ट हैं, आप और मैं और जितने भी लोग बैठे हैं, इवन द मैन फोक हु आर वर्किंग, वो इसीलिए हैं क्योंकि इनकी माओ ने काम छोड़ करके उनको बढ़ाने का पूरा काम किया है, फुल टाइम जॉब ये किया है. एंड नर्चरिंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस.
डेवलपमेंट नर्चरिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट.
इट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, उससे भी तो एक्टिविटी बनी रही है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर. अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस, अगर स्पेशली अगर एजुकेटेड वुमेन में हो रहा है कि वो जॉब नहीं कर रही है, बिकॉज दे सम ऑफ द टू पीपल हस्बैंड एंड वाइफ, द वाइफ चूजेस कि मैं फैमिली में काम करूंगी. और इट्स अ वेरी मे बी यू नो नॉट अ वेरी दिल्ली गुड़गांव स्टोरी, बट इन द टीयर वन टीयर टू सिटीज दिस इज अ स्टोरी विच इज sort of pervasive, we cannot deny it. And if they're making their choices and they are respected for their choices and they're rewarded for those choices, it's fine. It's their choice, right? And that's why you build a great workforce as well. Now, agar ye forcefully ho raha hai, ki a woman is not getting to work despite wanting to work and being educated for it or being paid less, as you said, that is something which is a systemic error. Wahan pe institutional fault hai. Usko, us fault line ko sahi karne ki aavashyakta bilkul hai. और उसको हम सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं. बट जस्ट टू टेक नंबर्स कि 20% वुमेन वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग, इट शुड बी 50%. व्हाई इट शुड बी 50%? व्हाई नॉट 70%? देर आर नर्सेज हु आर प्रॉब्ली 70-80% वुमेन, देर टीचर्स हु आर 60-70% वुमेन, देर आर मेनी प्रोफेशंस वेयर वुमेन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, यू नो, मेडिकल, एजुकेशन एंड सो ऑन, एंड देर आर मेनी मोर. वी डोंट हैव द डेटा, बट आई अज्यूम दिस विल बी द राइट फिगर टू गो दैट. सो वी डोंट से कि नहीं 50% क्यों नहीं है. सो समटाइम्स पीपल चूज jobs which they best want to contribute in, and it's fine to do that. Men and women are that's how societies are built. Societies are built because each one brings in their competence on the table, and we do best for the country. And I think as long as somebody is not being forced to work, not work, forced to be out of work, which jo bhi hota hai wo bhi hota hai, it's their choice, but choices should be free and fair. Now we need to create a mechanism so that even if a woman chooses to, or even a man, if he chooses to be a homemaker, a man can also be a homemaker, there can be some sort of a compensation for it. Mm-hmm. Various government policies aise pe aa chuki hain ki jaise Uttar Pradesh mein state mein ek policy aayi thi jisme women ko wo pension dete the, jo ghar pe bachchon ka khyal rakhti thi unko pension dete the, aur jis prakar se depending agar do bachche hain to itna pension milega, do se zyada hai to kam milega, kai jagah hai. So it happened in multiple places. That may be a good thought, you know, you can actually compensate a homemaker. But to say any all women should have 50% participation in every single profession, it should be 50-50, then it would not be the optimal system. And I don't think it'll be a very happy system either. So it should be where X is good, you know, A gender is good, they should be more contributing there. Where the female gender is better, they should be actively contributing there. It's a matter of choice and also sometimes need. Economic needs also govern ki ghar mein do log kaam karenge ya ek. जो नहीं होना चाहिए, अनइक्वल वर्क, अनइक्वल पे फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क शुड नॉट हैपन. एंड फोर्सफुली एनीवन बीइंग फोर्स्ड आउट ऑफ द वर्कफोर्स बिकॉज ऑफ यू नो सोशल रीजंस और बीइंग अ लेडी या बीइंग अ वुमन, दैट शुड नॉट हैपन. सो इफ दैट इज नॉट डन देन इट्स फाइन. बांग्लादेश का जो वुमेन एम्पावरमेंट आया था वो काफी हद तक डेस्पिरेशन ड्रिवन था.
मतलब
दे डिडंट हैव मनी, सो दे हैड टू गो आउट एंड डू डबल जॉब्स. ये भी तो होता है. आप लोअर मिडिल क्लास में इफ यू गो, देन अ लॉट ऑफ वुमेन वर्क एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैमिली, दे डू बोथ, डबल वर्क. आई डोंट थिंक इट्स समथिंग विच इज हेल्दी फॉर अ ह्यूमन बींग टू बेयर बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इट इवन इफ वुमेन इज वर्किंग, इज द मैन शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द होम इक्वली इफ शी इज अर्निंग? सो दोनों ही काम कर रहे हैं, बट वो भी नहीं होता है. स्पेशली लोअर मिडिल क्लास में तो बिल्कुल नहीं होता है, और बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था. So it's a complex animal which cannot be put in a data ki 19% workforce is in manufacturing, and that's a bad news. What are they doing at home? If they're raising great families, it's a great contribution. Now, should we compensate for them? Yes, we should. We should compensate every homemaker, in my view. And governments have tried it. I mean, MP, UP, many other state, central government may also someday try that out.
I think we have moms ko hamare professional careers mein jitna credit unhe dena chahiye usse bahut kam dete hain to hame bahut zyada dena chahiye kyunki professional career bhi tabhi bana kyunki moms ne itni hamari help kari itna hame develop kiya as a human being.
Even our fathers, I don't think I know anyone whose father has said mummy ko ki tum kuch kamati nahi honge kuch hai lekin us generation mein it was accepted. It's fine. I mean, just because tum ghar chalati ho iska matlab ye nahi hai ki tum choti ho. You are lesser than me. In fact, many of times in my generation, especially, father will give the money to the mother will give money to the father back, you know, after deducting all home expenses and savings and all. And it was a naturally accepted way of living where nobody said ki tum bade ho tum chote ho iski wajah se.
Yeah,
I think that understanding was there. I think jab hum bahut western comparison karne lagte hai na to ye bhi tootna shuru ho jata hai ki, you know, everything is monetized, everything kaun kitna kama raha hai wo utna hi izzat mein wahi upar niche hai. अब प्रॉब्लम क्या है, सैलरी तो ऊपर नीचे होती है, बोनस आ गया तो वो ऊपर चली गई, बोनस चला गया तो तुम नीचे आ गए, मतलब ऐसे थोड़ी ना चलेगा. वी हैव टू, फैमिली इज अ मच स्ट्रॉन्गर थिंग देन मनी कैन बाय.
टेल मी लाइक 3-4 थिंग्स व्हिच यू फील कि इंडियन नॉलेज और इंडियंस ने किया है लेकिन वर्ल्ड उसके क्रेडिट लेता है और हमें पता ही नहीं है.
मैनी, मतलब इसका तो 2-3 तो है ही नहीं. वी आई हैव रिटन सेवरल एपिसोड्स ऑफ सेवरल बुक्स ऑन दिस टॉपिक.
क्या बात कर रहे
हैं. इंडियाज नॉलेज इज द बेसिस. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज आई वाज टेलिंग द लास्ट पॉडकास्ट, 6-7 हज़ार की सिविलाइजेशन हिस्ट्री में ऑल बट 500 ईयर्स वी हैव बीन एट द टॉप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ ऑल थ्योरीज. सो एवरीथिंग हैज टू ओरिजिनेट जस्ट लाइक आज की डेट में या अब तक तो ऑल द ग्रेट इन्वेंशंस हैव कम मोस्टली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन द पास्ट 100 ईयर्स बिकॉज दे वर द रिचेस्ट, दे कुड अफोर्ड इट. वी वर ऑल्सो रिच पीसफुल सिविलाइजेशन
विद एजुकेशन.
हमारे पास तो 4000 BC से लेकर के 1600 AD तक वी वर एट द हेल्म, द टॉप ऑफ द इकोनॉमिक कर्व with very minimal interior wars, with very good natural resources. तो हमारे पास तो समय ही समय था ये करने के लिए और पैसा भी था, इसलिए हमने नालंदा बनाई, तक्षशिला बनाई और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई. वहाँ पर मल्टीकल्चरल असेंबलीज होती थी. अभी मैं कश्मीर में गया था और वहाँ पर कश्मीर में राजा कनिष्क ने साइट्स बना रखी हैं जहाँ पर उस जमाने की यूनाइटेड नेशंस जैसी चीज़ होती थी, जहाँ पर सारी दुनिया से रिसर्चर्स बुलाए जाते थे, वो बैठते थे, फिलोसफर्स, थियोलॉजिस्ट, और वो बैठ करके बातें करते हैं. तो मैं देख करके आया, ब्यूटीफुल साइट, मल्टी लेयर पहाड़ी पे बना रखी है. तो यहाँ पे तो नॉलेज, वी वैल्यूड नॉलेज, तो नॉलेज हमारी वैल्यू थी.
कौन सी चीजें जो थी?
अब जैसे लास्ट टाइम तो कुछ चीजें बता दी थी, कुछ नई चीजें बात करते हैं. जैसे बुलियन के बात करते हैं, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं ना, बाइनरी सिस्टम, कंप्यूटर बाइनरी पे चलता है. तो हम कहते हैं कंप्यूटर रन्स ऑन बाइनरी, 1 और 0, राइट? और बाइनरी का जो मैंने पढ़ाई करी कंप्यूटर साइंस की स्कूल में, आपने भी करी, एवरीवन इज टॉट कि बाइनरी का इन्वेंशन या तो ब्लेज पास्कल ने किया या लिबनिट्स ने किया.
ब्लेज पास्कल, या
हाँ, ब्लेज पास्कल और लिबनिट्स, दो लोगों को, गॉटफ्रेड लिबनिट्स और ब्लेज पास्कल, इन दोनों को हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं हुआ और चार्ल्स बैबेज ने उसको कंप्यूटर कोड में लगा दिया, फिर लेडी आडा लवलेस आई ऑन सो ऑन सो फोर्थ, IBM बना. या बट द ट्रूथ इज बुलियन एंड बाइनरी इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट एंड इट्स फार फार, मतलब करीब 200 या 300 BC की बात है, यानी कि आज से करीब 2200 साल पहले पिंगल करके दिस ऋषि हु राइट्स अबाउट लघु एंड गुरु. लघु एंड गुरु, गुरु मीन्स बिग, लघु मीन्स छोटा, छोटा बड़ा. एंड ही, वो पूरा न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट श्लोकों में था. अब प्रॉब्लम क्या है, हमें श्लोक समझ में नहीं आते जल्दी क्योंकि श्लोक थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं समझना, बट याद रखना आसान होता है. तो किसी इवेंट में, तब तो किताबें होती नहीं थी, किताबें खराब हो जाती थी, अगर आप लिख के भी कुछ रखेंगे तो मटेरियल खराब हो सकता था. तो एवरीथिंग वाज लर्नड एज वेल, तो श्लोक में होता था सब कुछ. सो लघु और गुरु के बीच में ही हैज रिटन पूरी पूरी बाइनरी सिस्टम. सो बाइनरी में जो आज हम 0001 लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है नंबर 1, या 0010 विच इज नंबर 2, उसमें वो उल्टा होता था. 1000 इज नंबर 1 एंड 0100 इज नंबर 2. तो बस फ्लिप होता था, मिरर फ्लिप. लेकिन सारी बाइनरी एंड बाइनरी कैलकुलेशंस वर डन बाय ऋषि पिंगल. अब कितने साल लगे लिबनिट्स को? लगभग 1700 साल बाद लिबनिट्स एंड पास्कल केम अप विद द बाइनरी थ्योरम, जो बाइनरी नंबर सिस्टम रहा था. तो ये हमारा इन्वेंशन था, कंप्यूटर की भाषा हमने बनाई और आज भी हम क्रेडिट देते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं, हम नाम ही नहीं है पिंगल का. फिर वी डोंट इवन टॉक अबाउट कि ये भी कोई, यू नो, ऋषि थे जिन्होंने कुछ काम किया. पीपल, शल्य चिकित्सा, योर surgery is an Indian concept.
Really?
It is entirely Indian. We are the holy grail of rhinoplasty. Naak ki surgery hoti hai. We have equipments which are at least 1300 years or more, actually 1500 or so years old, who have been designed on ye metal ke objects hain aur ye alag alag janwaron ke claws se bane hue hain. So there was shalya chikitsak the, surgeons the, who would come together and they will observe bodies mein jin pe animals ke cuts lage hote the, kyunki log jangalon mein aate the to cut aise dead bodies ya even alive mein cut laga hota tha. Us cut ko replicate karne ke liye they used to build equipments कि जानवरों के क्लॉक के हिसाब से इक्विपमेंट बने, ताकि इस तरह का कट लगाना है तो इस जानवर के क्लॉक की तरह इक्विपमेंट बनेगा. एंड दे वुड ऑब्जर्व दैट. सो द रीजन फॉर दैट, योग फॉर एग्जांपल, योग इज अ ग्रेट, यू नो, अब सारी दुनिया बोल रही है, अब एक इन्वेंशन है जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, बट इट्स सच अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट ऑफ इंडियन नॉलेज. क्यों हम करते थे ऐसा? कारण यह है कि सारी दुनिया के पास ना समय था ना संसाधन. हमारे पास एक लंबी सिविलाइजेशन थी और बहुत संसाधन थे, तो हमने नॉलेज को बनाने में इन्वेस्ट किया जेनरेशंस में. सो द थिंग इज दैट अब हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मैं लास्ट टाइम बोल रहा था कि हम सब्जेक्टिवली ऐसी सोसाइटी बन गए जिनको ये सिखा दिया गया है कि आपको कुछ नहीं आता था, आपके सब लोग फोर फादर्स व जंगली, इनको कुछ नहीं आता था, और आप जो हम बता रहे हैं वो सीखो क्योंकि हम सही बता रहे हैं. और यहीं पे प्रॉब्लम आई. दैट्स बेसिकल. जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आई वॉज इन अ योगा कॉन्फ्रेंस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, किसी ने बोला कि योग शुड बी डिसैनिटाइज, उसको हम इंडियन ना बोले, उसे हम ये ना बोले कि ये हमारे पूर्वजों का प्रोडक्ट है, हमारी संस्कृति का प्रोडक्ट है, तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी. ये बात क्यों है? क्यों होना चाहिए? हम एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए हम उस पर ग्रेड हटा दें अपना. कल को कोई बोलेगा कि ये मैगी है से नेस्ले का लोगो हटा दो तो ये बिक जाएगा, तो क्या नेस्ले का कहाँ हटा दो? ऐसा तो नहीं होगा ना. इट्स माई प्रोडक्ट, वाई शुड आई एम नॉट क्लेमिंग एनी IPR फॉर इट. आई एम नॉट सेइंग गिव मी अ रॉयल्टी ऑन योगा, तो इंडियन शुड गेट ए रॉयल्टी ऑन एवरी पर्सन हु डज योगा. तो योग अगर करने वाले से हम रॉयल्टी नहीं मांग रहे हैं, एटलीस्ट क्रेडिट तो दे दो. सो क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं आयुर्वेद का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए? क्यों हम उसको प्लांट साइंसेस बना करके बेचने की कोशिश करते हैं? बायो साइंस के प्रोडक्ट हम बनाएंगे, आयुर्वेद की क्यों नहीं बनाएंगे? आयुर्वेद में क्या बुराई है? इट इज़ अ मार्वल ऑफ बॉटनी विच इज डन 2000 ईयर्स अगो एंड इट इज़ वर्किंग. इट हैज़ प्रूवेबल एविडेंस नॉट जस्ट बाय अस बट बाय अदर्स. क्यों ऐसा होता है कि हम इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं बट व्रत रखने के नाम पर हमें शर्म आती है? है ना, इंटरमीडियंट फास्टिंग करेंगे. सर, वॉट डू यू डू इंटरमीडियंट फास्टिंग? व्रत नहीं रखते. व्रत तो यू नो गाँव में लोग रखते हैं. मतलब ऐसा क्यों? सेम चीज़ है. सेम चीज़ को अगर मैं अंग्रेजी नाम दे दूँ और उसके पीछे एक जैपनीज थ्योरी लगा दूँ तो इट्स एक्सेप्टेबल. बट वही चीज़ अगर भारतीय परंपरा में है और सभ्यता में जुड़ी हुई है तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो ये मेरे क्लास पे नहीं है, मेरे लेवल पे नहीं है.
ओके, लास्ट क्वेश्चन. आई नो वी डिडंट टच ऑन दिस लास्ट टाइम, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. Because every time you come and I'm intrigued about your journey 100%, but I'm more intrigued about your journey with Dr. Kalam. That's also like one thing which I would love to know. And a lot of people last time comments mein logon ne likha tha ki ab Dr. Kalam ke bare mein aur poochte, to mujhe ek bada simple question karna hai. It's about one specific question ki Dr. Kalam ko we all know as a visionary, as a leader. ठीक है, उनको एज समबडी हु लेट द कंट्री, बहुत सारी चीज़ें, बट आई वॉन्ट टू नो डॉक्टर कलाम एज मेंटोर, कि वेन ही वॉज वर्किंग विथ यू, हाउ इज़ डॉक्टर कलाम एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, उनमें क्या खासियत थी? वॉज ही अ ग्रेट टीचर, गुड टीचर? बिकॉज आई रिमेंबर आई थिंक उनकी लास्ट स्पीच में भी वो ही बोलते हैं कि आई एम अ टीचर एंड I'm going to go while teaching, so that's the best thing in the world or something. Like there was a quote which went.
I want to be remembered as a teacher.
I want to be remembered as a teacher, right? Yeah. So how was he as a teacher? Because you saw firsthand. And what's the importance of a mentor? Kya aapko lagta har kisi ko mentor rakhna chahiye life mein?
See, let's take it one step at a time. Okay. So Dr. Kalam, anyone as a mentor, if you get a mentor, nothing as is really good. But as Dr. Kalam used to say, and it's his words, If you are a mentee, you have to, the mentee-mentor relation eventually has to translate is pair. The mentee should be like a student, has to stand on the shoulders of the teacher.
Matlab,
this is figuratively, not literally. यू हैव टू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द टीचर मींस दैट आप उसकी नॉलेज और विजडम के ऊपर अपनी खुद की विजडम और नॉलेज बनाइए. एंड देन वी स्टैंड ऑन हिज शोल्डर्स, यू नो मेंटर के शोल्डर्स पे आप स्टैंड करते हैं, यू सी द वर्ल्ड इन योर ओन आइज. द टीचर विल नॉट शो यू द वर्ल्ड और टेल यू द वर्ल्ड फ्रॉम हिज और हर आइज. द टीचर विल इनेबल यू टू सी द वर्ल्ड as it's seen from your eyes, and he will be the shoulders on which you can stand so that you can look far and wide. That is the relation. So if you find a mentor,
so teacher yahan tak dekh sakta hai, tum
uske upar hi dekhna hai,
aage dekh,
and the teacher should be okay to do that. You know, the teacher should be humble and kind and should understand that that's how knowledge progresses. When your student stands on your shoulders and sees beyond you, you know, Arjun jo hai अपने गुरु से बेहतर धनुर्धर बने, गुरु का एम ये होना चाहिए. सो नाउ सो दैट्स आई थिंक इफ यू फाइंड समवन लाइक दैट, एम्ब्रेस. बट अ मेंटर इज नॉट अ डिक्टेटर ऑफ योर व्यूज, ही इज अ फैसिलिटेटर ऑफ योर ओपिनियंस. ही मे गिव यू अ कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू बट डज नॉट फोर्स कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है. क्योंकि आपको मेंटर जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा बनना है जिसमें मेंटर का जो नॉलेज विजडम और ज्ञान है वो समाहित होगा, लेकिन उसको वो संपूर्ण नहीं करता, पूर्ण करता है, लेकिन इट्स एन इंग्रेडिएंट इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट. डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समवन, डोंट बिकम अ कार्बन कॉपी ऑफ समबडी. दैट्स नॉट द गोल. द गोल इज यू आर योर ओन यूनिक सेल्फ एंड योर टीचर इन व्हाटएवर फॉर्म इज इनेबलिंग यू टू बिकम दैट यूनिक पर्सन and correcting you and directing you towards that. I think Dr. Kalam was that person. If you look at people who he has worked with, and of course he's worked with many people who would consider him as a teacher, sab apne apne alag hain. Mere unke viewpoints bahut alag the. He was a vegetarian and I was not, right? And his name, people thought he's a vegetarian. He's a non-vegetarian, so they would give him the food which had, you know, meat or something, and they would give me the vegetarian food and we would just change the plates. He never said you also become this. He enabled you to be your unique self, right? So I think enabling that is a great role of the mentor himself. The other thing is, I think you talked about Dr. Kalam as a visionary, as an achiever. Of course, that all is well known, but all that happens because of certain inherent values. I think those values set him apart. Why was he able to deliver something new for the nation in extreme tightrope budgets, in denial from foreign countries and so on? Every decade he did that. Every decade something new came. The hovercraft in 60s, the space mission in 70s, the missile mission in 80s, the nuclear power program, the nuclear armament in 90s, and then the Rashtrapati Bhavan, and then he became a teacher. Every decade something new. That energy and that drive, where does it come from? So first of all, I think Dr. Kalam did not have narrow boundaries for people. Embracing diversity, embracing different kind of... I didn't speak Tamil. He didn't speak Hindi. The only communication we had was tutti-futti Hindi sometimes. And my tutti-futti Tamil is even worse. And English, right? And there was never a problem with that. I never felt that there's a... our mother languages are different. Kabhi aisa laga hi nahi. Wo feeling hi nahi aayi kabhi. Kabhi aisa laga ki hum cultures mein alag hain. या हम उम्र में भी इतना अलग हैं. मतलब ही वॉज 80 साल में, मैं 20 साल की उम्र में, आई वॉज इन माई 20s, ही वॉज इन इज 80s. एंड नहीं लगा ऐसा कि यू नो इतना, क्योंकि ही वॉज सो यूथफुल, इतना युवा सोच थी उनकी कि अच्छे खासे युवाओं को चैलेंज देते हैं. एंड दैट्स द थिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट. ही वॉज नॉट जस्ट अ गुड टीचर, ही वॉज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट. अपनी जीवन के अंतिम दिन, at 83, ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, 27 जुलाई 2015 को, 83 साल की उम्र में, जब हम दिल्ली से गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलोंग जाना था हमें, शिलोंग में उनकी मृत्यु हुई. दिल्ली से गुवाहाटी करीब 2.5 घंटे की फ्लाइट है, विस्तारा की फ्लाइट थी. उस विस्तारा की फ्लाइट में हम लोग बैठे थे, तो उनका एक छोटा बैग होता था, हैंड बैग जो होता था, उसको जब वो जाते थे तो पीछे से मैं उठा लेता था. उसको मैंने उठाया तो वो बहुत भारी था बैग. सो अच्छा, आई कैन डू जोक्स एंड ऑल विद देम. सो मैंने उनके बैग खोला, मैं इसमें ये किताबें हैं, एक निकली, इस वजह लाइक जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना वो कार्टून की तरह, एक किताब निकली. मैं कहा ये मोटी सी किताब है, सर इसकी वजह से भारी, तो दूसरी निकाल, दूसरी ऐसे एक और रखी हो जरा, फिर उस वाली पॉकेट में एक और रखी हुई है. मैं कहा सर एक दिन के लिए आप जा रहे हो, कल वापस आना है रात में, आप तीन किताबें लेके क्या करोगे, और वो भी इतनी मोटी मोटी, इतना हैवी बैग हो गया है. व्हाई यू आर टेकिंग थ्री बुक्स? ही सेड, नो सी, आई एम रीडिंग दिस बुक, ए फर्स्ट बुक, ठीक है, ये जो सेकंड बुक है, आई नो आई विल फिनिश दिस बुक, तो नाउ आई हैव टू पिक द सेकंड बुक बिकॉज ये खत्म हो गई तो इसको ले आएंगे. तो मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, तीसरी किस लिए? कहता आई डोंट नो द सेकंड बुक विल बी गुड और नॉट, व्हाट इफ इट्स नॉट गुड, देन आई विल गो टू द थर्ड बुक, ग्रेट. तो व्हाट वाज ही डूइंग? He was a continuous learner, and that's how great teachers become great. Teachers who stop learning stop being great teachers. Even the last day of his life, he was with three books. Two of them were actually spare. One was spare, the other was, you know, because that book will finish, I want to utilize my time to do something else. And on the same day, because I met him as a teacher in 2008 in IIM Ahmedabad, the last day of his life was also as a teacher in IIM Shillong across the country, right? And we reached, the lecture was supposed to start at 6:30 p.m. at IIM Shillong. We reached at 6:25, थोड़ा लेट हो गए थे, और एक गेस्ट हाउस में रीच किए थे, तो वहाँ से ऊपर तक जाने में 5 मिनट लगता, तो जस्ट इन टाइम चल रहे थे हम. सो ही लव्ड टी एंड दैट राउंड बिस्किट्स, राइट, वो. सो देन दे गॉट इन द टी एंड आई सेड सर यू हैव द टी. And then he got that, you know, he started talking to one of the soldiers who was standing for him. Hmm. That's a story in itself. There's one soldier who was standing while we were going. Wo gypsy ke piche khada tha. So he wanted to apologize to the soldier saying that meri wajah se tumhe 3 ghante khade rehna pada. So usko lekar ke aaye to usse wo baat karne lage. Jab usse wo baat karne lage to 5 minute nikal gaye. To abhi time hi nahi bacha. So maine kaha sir we'll get a new tea, and he offered the tea to the soldier. So there's new tea has to be made. So I said 5 minute ruk jaiye, the students are there. I will go, I will set things up. I'll manage the show and you come at 6:35. He said something very profound, and those were amongst his last words. He said, you see, that's a wrong advice. I'm his advisor. He said, that's a wrong advice. A student must not make, a teacher should not make his students wait. You know, hum kehte students should not be late. Mm. He said, a teacher should not make students wait. I have to go. And so he went. He never came back for the tea. Never ever. Because while he was teaching, he passed away. But even at his last moment, what was the mentor doing? He was valuing the effort of the student. So when teachers learn, students have to respect teachers. But when teachers also respect the time of the students, a beautiful classroom emerges.
Yeah.
That's the learning environment we need to build. Shayad wahan kabhi kabhi miss kar jate hain, hai na? So this is... how you connect with your student better, and also you are a continuous, you are learning with the student, so that helps in a way. And life is most taught in values and not in facts. I can teach you a fact or anyone a fact today, tomorrow that fact will become irrelevant, something better will come. I know kuch achhi kahani batane wale mujhse bhi achhi wale aa jayenge, mujhse achhi baatein aa jayenge, lekin jo jeevan ke niyam honge, jeevan jeene ke tareeke honge, वो सिखा देंगे तो हम कभी नहीं बोलेंगे. डॉक्टर कलाम टॉट मी वन थिंग, स्मॉल थिंग. कभी भी जैसे ऐसी एक लंच टेबल थी, 4 लोग बैठ सकते थे उस पर, उसके बाहर एक शीशे का दरवाजा था, वो शीशे के दरवाजे के दूसरी तरफ एक चबूतरा था, उस पर बहुत सारे तोते कबूतर, एक मोर थे बहुत सारे, वो पूरी फैमिली आती थी मोर की, और वो छोटी वाली चिड़िया स्पैरो जैसी जो होती है वो सब आती थी. डॉक्टर कलाम विल नेवर स्टार्ट हिज फूड till those birds were fed. Never ever. I've had 7 years, almost all lunches with him, all breakfasts. वो चिड़िया आती थी breakfast, lunch, रात में तो नहीं आती थी, but breakfast और lunch में वो चिड़िया को खाना खिलाए बिना he will never start his food. So one day we were getting late and I said कि in his early days I started working with him. मैंने कहा सर वो दे देगा वो. We had a military personnel who used to help us with all the household work. And मैंने कहा दे देगा सर, his name was Chilappa. So I said, Chilappa de dega, aap shuru kariye, let's start eating and we have to go. He said, no. If I do this once, in my mind, it will become a habit that I can circumvent this duty. And those birds will never complain because they can't. So I have to feed them and as separately, alag alag sab ke liye rakha jata tha, taki aapas mein lade na wo birds. But I will not start till this happens. So what is the point? The point is good habits, kindness, compassion, empathy have to not only be learnt once, but they also need to be protected. कई बार हम अच्छी आदत हाँ पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छी आदत हम कुछ दिन में छोड़ देते हैं. एक वो मौका आता है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, लेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, तब बुखार है, तबीयत खराब है, कुछ भी है, आज नहीं करते हैं। जिस दिन आज नहीं करना सीख ले या उस दिन आपके माइंड ने क्या सीखा कि कभी कभी ये नहीं कर सकते हैं, चलेगा, और फिर वो बार बार आप करेंगे। सो ही नेवर डिड दैट, सो वी लर्न फ्रॉम दैट। टुडे आउटसाइड आवर ऑफिस देयर इज अ थ्री लेगेड डॉग एंड वी फीड देम। इट हैज़ टू बी डन, इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल। दैट्स समथिंग विच आई लर्न्ड, एंड आई थिंक एवरीवन शुड हैव दोज एंकर पॉइंट्स इन लाइफ, एंड दीज गुड एंकर पॉइंट्स, एम्पैथेटिक एंकर पॉइंट्स एक्चुअली हेल्प यू बी हैप्पी। एज डॉक्टर कलाम सेड, द वे टू बी हैप्पी is to practice one thing, which is what can I give. In fact, unke upar jo book likhi maine, uska title hi yahi hai, what can I give. So because what can I give, even for 10 minutes, 15 minutes, if you do it, it'll make you happy and it'll make you more productive, more happy, of course, and you'll also be able to keep other people happy, which is very important, and you'll sleep well. I think that's very, very important. So that's one something which I think from the mentor's perspective is quite important.
I'm moved, and I think I'm gonna take this line and I'm gonna write it outside, because outside, if you see, there's like a values wall where I keep stealing things from people who have said it right and do right thing. On the left, there's something which I believe in, and on the right, there's something, everything which I've stolen from other people. So I'm stealing this from
inspired,
you.
Inspired, not stolen.
I love stealing. Okay. I love the word stealing because it's not like blatantly, I'm just taking your words and putting
you
there.
You have no option.
Yeah, so that's
happy
what I'm
to
doing.
Do that. It's an honor to be on your wall.
So I'm gonna take that, and that's something I'm gonna write. That I'm going to write in a bold letters, what can I give?
Yes.
And I think that should be the ending question for everybody to ask themselves today at the end of the podcast. Hey, ask yourself this question when you're starting this, or when you're just finishing this question, this particular podcast, and you're starting your life again, just ask yourself, what can I give? And try to keep asking yourself this question. It's a great question. Thank you so much.
Thank you
for having a deep and long conversation with us once again. I want to get you back again and again. And so it's a pleasure to have you here. Thank you so much to come on Figuring Out. As I love to say, you're not a guest on Figuring Out. You're a teacher on Figuring Out. Thank you. You should keep coming on again and again and teach us.
Absolutely happy to do that. And my best wishes to you, your team.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें बताओ, क्या ऐसे और गेस्ट आप देखना चाहते हो जो इंडिया के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करें, और फ्यूचर में हम कैसे अपने आप को वेल इक्विप्ड नेशन और वेल इक्विप्ड लीडर बना सकते हैं उसके बारे में बात करें? अगर हाँ, तो हमें बताओ कि अगली बार हम ऐसे जब गेस्ट लेके आए तो उनसे क्वेश्चंस क्या पूछें, ताकि हमें पता चले कि आप किस में इंटरेस्टेड हो, और वैसे ही टाइप के कॉन्वर्जेशंस हम आपके लिए लेके आ पाए। यू नो व्हाट टू डू। आपको ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसको इस कॉन्वर्जेशन से हेल्प होगी और वो अपनी लाइफ में एक बेहतर लीडर बन सकेंगे। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।